एकहायन आसीनो ह्रियमाणो विहाय सा दैत्येन जस्त्रिणा वर्तं अहं कंठ ग्रहातुरं एवं विधानि कर्माणि गोपः कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मितः।
सुविस्मिता
कालकस्य यदि तानि
श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं विधानी, इस प्रकार के गोवर्धन धारण जैसे अन्य भी कर्माणि, कर्मों को गोपाः, गोपगण कृष्णस्य, कृष्ण के, वीक्षा देखकर अथवा स्मरण करके, ते कृष्ण के प्रति परम स्नेह से भरे हुए, अतद वीरजविदः, स्नेह बस कृष्ण के ऐश्वर्य को जो भूल जाते हैं वे गोपगण, जो कृष्ण की महिमा को नहीं जानते। प्रोचुहु, परस्पर कहने लगे, समभ्यत्या, नंद महाराज के पास आकर, सुविस्मिता, अत्यंत आश्चर्यचकित, हिंदी बोलिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण के गोवर्धन धारण कर्म को देखकर और इसी प्रकार के पहले के किए हुए अन्य कर्मों का स्मरण करके गोपगण बड़े विस्मित हुए। वे कृष्ण की महिमा नहीं जानते थे, कृष्ण के प्रति सहज स्नेह वात्सल्य होने के कारण कृष्ण के ऐश्वर्य का उन्हें अनुसंधान नहीं था। वे नंद बाबा के यहां पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, पहले आपस में बातें किए और इसके बाद वे नंद महाराज के पास पहुंचे। श्री गोविंद पदाम्बुजात सरणी भावोपलब्धम फलम विज्ञायैव मशेष संकट भव प्रारब्ध दुःखापहम त्यक्त्वा साधन मन्यदच्युत पद प्राप्तै सदैवाच्युतः श्रेयः कांच विराद रात कलिजनैर गेयस प्रीतिहोच्यते। इस अध्याय में नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत हो रही है, तो श्री हरिश्री जी कहते हैं कि इस अध्याय का तात्पर्य है, श्री गोविंद पदाम्बुजात सरणी भावोपलब्धम फलम, श्री गोविंद के चरणों की शरण, चरण कमल की शरण लेना ही मनुष्य जीवन की सफलता है, यह जान करके, और यह जानकर कि समस्त संकटों को, प्रारब्ध दुख को मिटाने वाला कृष्ण का चरण कमल है, अतः त्यक्त्वा साधनम अन्यत अच्युत पद प्राप्ति, अन्य समस्त साधनों को छोड़कर और अच्युत पद वैकुंठ प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए या उनका चरण कमल प्राप्त करने के लिए, सदैव अच्युतः कलि जनहि ही ज्ञेय। कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों को चाहिए कि सदा अच्युत का, श्री कृष्ण का कीर्तन करें, गुणगान करें, यही इसका तात्पर्य है। गोप लोग किस तरह से संकट से बचे हैं और वे किस प्रकार श्री कृष्ण के ही विषय में दिन रात बातचीत करते रहते थे, सोचते रहते थे, यह इसमें कहा गया है। इसी पर श्री हरि श्री जी यह बात कहते हैं कि श्रेय कांक्षी जो अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि भगवान कृष्ण का ही सदा कीर्तन करें। गोवर्धन धारण के बाद भगवान अपने गांव में आ गए ब्रजवासियों के साथ। ये सभी ब्रजवासी 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जी की छाया में रहे थे, उनके चरण में नीचे। जब भगवान ने गोवर्धन को उखाड़ा तो उसे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जितना दूर में गोवर्धन फैला था। बहुत सुंदर धरातल था, बहुत उभड़ खाबड़ नहीं था, बिल्कुल नीचे तल सपाट मैदान बन गया। तो उसमें लोग रहे 7 दिन 7 रात, वर्षा होती रही पर ब्रजवासियों का, गौओं का और किसी भी जीव का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे बड़े आनंद से थे। गोवर्धन के नीचे भगवान का मुख कमल निहार रहे थे, देख रहे थे, और खाना पीना सोना बैठना सब भूल चुके थे, परम सुख में थे, आनंद में थे। तो जब तक भगवान गोवर्धन धारण किए रहे तब तक सभी ब्रजवासी भगवान के मुख कमल के अमृत को पी रहे थे, उनकी शोभा देख रहे थे, लावण्य अमृत, उनकी सुंदरता के अमृत का स्वादन कर रहे थे। अतः भूख प्यास उन्हें याद ही नहीं रही। उस समय तक तो कृष्ण के विषय में आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि कृष्ण के मुख कमल सुधा को पी रहे थे, कृष्ण के सौंदर्य को देख रहे थे, अतः उसी में लगे हुए थे। ये विचार नहीं उठा कि ये बच्चा गोवर्धन पर्वत, भारी पर्वत उठा रखा है, ये क्या है, देवता है, इस तरह का कोई विचार नहीं आया उस समय। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पर्वत रख दिया उनके स्थान पर, इसके बाद गोप लोग अपने अपने घर आए, तब गोवर्धन धारण की लीला का स्मरण करने लगे और आपस में लगे कहने, अरे भाई ये तो अद्भुत बात हुई, अद्भुत बात हुई, ये 7 बरस का लड़का कृष्ण यह हम लोगों के समाज में रह रहा है, गोप में जन्म लिया है, निश्चित ही यह मनुष्य नहीं है। जब तक धारण किए रहे तब तक इसका अनुसंधान नहीं रहा, जब घर पर पहुंचे तब आपस में कृष्ण के विषय में बात करने लगे। सदा ही कृष्ण के विषय में बात करते थे और गोवर्धन धारण के बाद तो स्पेशल लोग आपस में बात करने लगे। एवं विधान कर्माणी गोपा कृष्ण से विक्षते ते गोपा, जो श्री कृष्ण के वात्सल्य में भरे रहते हैं कृष्ण के प्रति स्नेह से, वे गोपगण कृष्ण के इस प्रकार के कर्मों को एवं विधानी, एवं का अर्थ है गोवर्धन धारण जैसे अन्य कर्म भी, जैसे पूतना का वध, तृणव्रत का वध, सकट का विपर्यय, रघासुर का वध, धेनुकासुर का वध, कालिये का दमन, बच्चासुर का वध, बकासुर का वध, इस प्रकार के अन्य कर्मों को भी वो लोग याद करने लगे। और पूतना उद्धार तथा बकासुर का वध, सकट का पलटना, उस समय भी आश्चर्य करते थे, लेकिन ये मान लेते थे कि कृष्ण में नारायण का आवेश होता है, नारायण की कृपा है, इससे कृष्ण के द्वारा ये मर गए। कृष्ण ने मारा नहीं, कृष्ण में नारायण आ करके मार देते हैं, भगवान मार देते हैं। तो अब तक तो ये लोग यही कह कह आपस में सोच करके या कह करके कृष्ण पर ज्यादा मुग्ध नहीं होते थे। भाई नारायण जब आए तो कुछ भी कर सकते हैं, नारायण कृष्ण में आए। अच्छा, दूसरी बात ब्राह्मणों का आशीर्वाद, तो ऐसा ही ब्रजवासी मान रहे थे कि जो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है इस बच्चे को वो कभी विफल नहीं हो सकता, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पुतना का वध कर दिया, उनके आशीर्वाद से तृणव्रत का गला पकड़ करके पटक दिया आकाश से। तो जो भी हो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद तीन चीज मुख्य था, वो लोग सोचते थे और संतुष्ट हो जाते थे। नंद बाबा का पुण्य, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और कृष्ण में नारायण का आवेश। कृष्ण कुछ कर रहे हैं ऐसा वे लोग नहीं सोचते थे, ये तो बच्चा है, सब बचपन की लीलाएं हैं, बिल्कुल शिशु अवस्था की। कैसे वो मान सकते थे कि कृष्ण का ऐसा पराक्रम है और यह मार रहा है, यह सब कर रहा है। तो हमेशा बस यही मानते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आपस में बात भी करते थे। जब तृणव्रत का वध भगवान ने किया तो उस समय एक वर्ष के थे कृष्ण, एक हायन इसमें आया हुआ, तो बैठे थे, चलने की शक्ति नहीं थी। मां जसोदा को भारी लगने लगा अकस्मात, तो उठा नहीं पाई वजन, दूध पिला रही थी, गोद में रखी थी, तब तक कई टन भारी लगने लगे, तो वो घबरा करके उतार दी कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है, उसका वजन इकाई कितना बढ़ क्यों गया, तो रख दी। उसमें तृणव्रत आया, कृष्ण को ले गया। तो जब तृणव्रत गिर पड़ा एक पत्थर पर, भगवान ने ही गिराया उसको कंठ पकड़ करके, उसके ऊपर कृष्ण झूल रहे थे, तो ब्रजवासी क्या कहते हैं, ओहो देखो ब्राह्मणों का क्या आशीर्वाद है, ये बच्चा कहीं गया नहीं, इसको मारने के लिए राक्षस आया और आकर के स्वयं ही मर गया। बच्चा नहीं मारा, ये क्या बेचारा मारेगा जिसको चलने की उठने की शक्ति नहीं है, वॉकिंग करने की, मां ने बैठा दिया तो बैठा है, वो एक साल का बच्चा क्या करेगा, चलने की शक्ति नहीं है, और वो भी आकाश में निराधार, जहां इसके रहने का कोई आधार नहीं, वहां से मारा। आज कह रहे हैं, अब इसमें अभी नंद बाबा से बात करेंगे, अब तक तो ये लोग यही मानते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद, नारायण का आवेश, नंद महाराज का पुण्य, सुकृत इस बच्चे को बचा रहा है, लेकिन गोवर्धन धारण करने के बाद शंका बैठ गई मन में, ये निश्चित ही लगता है ईश्वर है, ये कोई मनुष्य नहीं है। तो आपस में वे लोग खूब तर्क करते थे, कोई कोई कहते थे नहीं मनुष्य क्यों नहीं है, आखिर चोरी करता है माखन की दही की, ये भगवान थोड़े करेगा, आपस में वो लोग कहते थे चोरी करता है और हम लोगों के स्नेह की अपेक्षा करता है, जब हम लोग इसका मुख चूमते हैं, प्यार करते हैं तब प्रफुल्लित हो जाता है, और थोड़ा उपेक्षा करते हैं तो इसका मुख म्लान हो जाता है, तो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की जिसको अपेक्षा है, जो मांग करके खाता है और कहने पर कि थोड़ा नाच दिखाओ तो नाचने लगता है, पीढ़ा मांगने पर ढो करके लाता है, जूता लाता है, तो तब वो लोग जो कह रहे थे कि भगवान है, तो हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हैं, तो भगवान तो हो नहीं सकता है। लेकिन सब मिला करके जब इस बात पर आते थे कि परंतु इतना बड़ा पर्वत 7 बरस का बच्चा और एक हाथ से उंगली पर उठा लिया, तब सब कहते थे हाँ भाई अब ये तो प्रमाण है कि ये ईश्वर है। लेकिन कृष्ण की और लीलाएं याद आती थी बचपन की, तो कहते थे नहीं नहीं ईश्वर नहीं है। तब ये प्रस्ताव हुआ कि तब नंद महाराज से ही पूछा जाए, हो सकता है किसी ज्योतिषी से पूछवाए होंगे। जन्म होता है तो कुंडली बनाते हैं ना, जन्म कुंडली, ये पहले क्या था, बाद में क्या होगा, उसका भूत भविष्य लोग भी जानते होंगे, पूछे होंगे किसी दैवज्ञ से, ब्राह्मण से पूछे होंगे। तो चला जाए उनसे पूछा जाए कि ये पहले क्या था, इसका क्या स्वरूप है। तो सब एक मत हो करके नंद बाबा के पास आए। यहां से श्रील सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद वीर्य विदह प्रोचो समभ्यत्य सुविस्मितः। इत्थं श्री भगवतः शक्त्यातिशय दृष्ट्या ऐश्वर्य ज्ञानेन ब्रज जनानानां तस्मिन् प्रेम ह्रासम आशंक्य तत्परिहारार्थं विशेषतश्च गोप वर्ग कृत संकायः श्रीनंदेन निरसनात् प्रेम भक्ति विवृद्धा इति बोधनार्थं तत्प्रसंगम आरभते एवं इत्यादिना जावत समाप्ति। सुखदेव गोस्वामी ये कथा प्रारंभ क्यों कर रहे हैं, नंद बाबा से गोपों की बातचीत, इसके विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब इस प्रकार गोपों ने भगवान के शक्त्यातिशय को देखा, इस महान परम शक्ति को जो अद्भुत किसी मनुष्य में संभव नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इंद्र जैसे महान देवता को भी परास्त कर दिए गोवर्धन धारण करके, तो ये देख करके ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान होने लगा, ये भाव होने लगा कि ये ईश्वर हैं। जैसे जैसे वे ईश्वर मान रहे थे तो वैसे वैसे प्रेम का ह्रास हो सकता था। कृष्ण के प्रति जो सहज प्रेम था, बच्चा है ये है वो है, तो उसका ह्रास हो सकता था, इसकी आशंका करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेम घट सकता था। अपना पुत्र मानना या बच्चा मानना जो प्रेम होता है, वो भगवान से कहां किसी को प्रेम है इस समय, है कि नहीं? जितना अपने बच्चे से प्रेम है इतना भगवान से नहीं है ना। कुछ लोग तो कहते हो तो निराकार है, प्रेम का कोई सवाल ही नहीं है। देवता माने या ईश्वर माने, इससे प्रेम घटेगा उनका। ऐसे अपना बच्चा है, इसकी रक्षा करनी है, करना है, तो प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम घट सकता था ब्रजवासियों का, तो इसका परिहार करने के लिए कि प्रेम घटे नहीं, तो उन गोपों की शंका का निवारण श्री नंद महाराज के द्वारा हुआ है और इनकी प्रेम भक्ति और बढ़ गई। नंद बाबा के प्रवचन से गोपों का प्रेम और बढ़ गया। और नंद महाराज क्या प्रवचन किए, जो प्रवचन गर्गाचार्य ने उनको सुनाया था उसी को हूबहू सुना दी। न उसका परपट नंद बाबा जानते हैं अर्थ, और न तो गोप जाने उसका अर्थ, तो गर्गाचार्य जानते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए कथा समझ में आवे या न आवे, भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़े, उनका जप हो, उनके बारे में पढ़े, प्रणाम करें, यही कथा का फल है। और शब्दों के अर्थ को खूब समझ लेना वो कोई फल नहीं है व्याकरण के अनुसार। व्याकरण पढ़ करके और संस्कृत के अर्थों को तोड़ मड़ो अन्वय करो ये करो और एक भी माला जप न करो, ये कोई फल नहीं है। नंद बाबा तो दस ग्यारह श्लोक जो है उसका कोई अर्थ नहीं समझे, पर बल्कि उसको सुन करके उनका प्रेम और बढ़ा और नंद बाबा के प्रवचन को सुनकर ब्रजवासियों का प्रेम उछल पड़ा। जो शंका थी कि ये ईश्वर है तो शंका मिट गई, नहीं ये ईश्वर नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बस यही भाव हुआ। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ किए थे अपनी टीका में, और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे कि मैं कृष्ण शब्द का बहुत अर्थ किया हूं, आप कृपा करके सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि मैं कृष्ण का अर्थ तीन ही जानता हूं, जो यशोदा का स्तन पीते हैं वे हैं कृष्ण, और जो तमाल वृक्ष के समान सांवले हैं वो हैं कृष्ण, और गोपी जनों के जो प्राण बल्लभ हैं वे हैं कृष्ण। इसके अलावा मैं दूसरा कृष्ण न तो जानता हूं न सुनना चाहता हूं, नहीं सुने। ऐसे उन्होंने आदर किया, उनकी टीका की सराहना किया, ठीक है बहुत अच्छा, लेकिन कृष्ण शब्द का अर्थ दूसरा में नहीं सुनना चाहता। जैसे आजकल राम शब्द का अर्थ को, राम माने दशरथ महाराज जी के पुत्र हैं राम, यह सुनते ही कुछ लोगों का दिमाग फट जाता है, अरे ये मनुष्य ये थोड़े भगवान है, ये थोड़े राम है, राम कोई और है, इस तरह की गड़बड़ बातें लोग बोलते हैं और सुनते हैं, ठीक नहीं। कृष्ण का मतलब यशोदा जी का पुत्र, गोपियों का प्यारा और सांवला सलोना, श्याम सुंदर, बस। तो इसी प्रकार नंद बाबा समझे हैं और गोप लोग। कृष्णस्य एवं विधानी कर्माणि वीक्ष्य एवं विध एवं, यहां तत्काल में है गोवर्धन धारण जैसा, गोवर्धन धारण तो देखे ही और कर्मों को देखे थे उसका स्मरण कर करके विस्मित हो गए, सुविस्मिता आश्चर्य में हो गए, आपस में बातचीत करने लगे और फिर नंद महाराज के पास आकर के लगे बोलने। कृष्ण के वीर्य को, प्रभाव को, उनकी शक्ति को वे नहीं जानते थे। अतद वीर्य विदह न तस्य वीर्यम ऐश्वर्यम विदन्ति अनुसंदधति इति तथा ते। जो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर रहे थे, विचार नहीं कर रहे थे, ते सदा तत्स्नेह विवशत्वे न प्रसिद्धा इत्यर्थ। वे गोप जो कृष्ण के प्रति सहज स्नेह में रहते हैं, स्नेह से विवश रहते हैं, वे गोप, वे ब्रजवासी गोपगण कृष्ण से एवं विधानी कर्माणि वीक्ष्य एवं विधानी गोवर्धन धारण आदिवत अमानुषानी पूतनादि बधात्मकानी कर्माणि वीक्ष्य दृष्टवा या अनुस्मृतवा, देख करके या अनुस्मरण करके सुविस्मिता संत समभ्यत्य सम्यक भक्त्या श्री गोपराजम अभिगम्य जद्वा मिथः सम्भूय। सम का अर्थ सम्यक आकर के, आपस में मिल करके, अथवा श्री गोपराज नंद जी के पास जाकर के, नंद बाबा के पास आकर के प्रोचु प्रउचु प्रोचु प्रकर्षेण न्याय प्रदर्शनादिना प्रेम पर्यवसानत्वे न वा उचु। तो प्रोचु का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी कर रहे हैं न्याय प्रदर्शनादिना, दोनों बात कह रहे थे। यहां न्याय प्रदर्शन का अर्थ है कि एक ही प्रवचन में वे कह रहे थे कि इसके और जो हम कर्म देखते हैं तो उससे एकदम यही सिद्ध होता है कि एक मनुष्य है और वो भी बहुत बुद्धि वाला मनुष्य नहीं है। ये मिट्टी खाया था, इसके मां ने उगला था मिट्टी, अरे जिसको मिट्टी खा रहा हूं और ये हानि करेगी मिट्टी, यह भी बोध नहीं है, तो बालक एकदम नादान और अपने घर का मटका फोड़ा, इसको ये भी बुद्धि नहीं है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, इसके चलते इसके मां ने उखल में बांधा था। इससे तो सिद्ध होता है कि एकदम मनुष्य है परंतु पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, तो उस समय तो हम लोग सोचते रहे कि भगवान नारायण की कृपा है, ये है वो है, लेकिन नंद महाराज ये गोवर्धन धारण करने से हम लोगों को बहुत शंका हुई है कि ये मनुष्य नहीं है, तो न्याय दिखा रहे, न्याय की ये केवल मनुष्य है इसके लिए उचित तर्क प्रमाण, न्याय का अर्थ प्रमाण, यह मनुष्य है बिल्कुल इसके लिए भी प्रमाण दे रहे थे और यह ईश्वर है भगवान है उसके लिए भी प्रमाण दे रहे थे, तो न्याय प्रदर्शना दिना, न्याय उपस्थित कर प्रमाण उपस्थित कर करके दोनों पक्ष का। और प्र का एक अर्थ है प्रेम पर्योसानत्वेन, जो भी बात कह रहे थे उसका प्रयोसान क्या था, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा था उनकी बातों से, तो ईश्वरत्व सूचित करने वाला प्रमाण भी दे रहे थे और मनुष्यत्व सूचित करने वाला भी प्रमाण दे रहे थे, बस इसी में लगे रहते थे रात दिन कृष्ण की ही बात करना चिंतन करना। अरे उस दिन देखे बहुत वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए हैं लीलाओं के, लेकिन उसको प्रतिदिन तो बोलते ही थे, आज भी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, बस रात दिन गाते रहते हैं। इसी से हरिश्वर जी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को गाते रहना बस यही जीवन का फल है। तो हम लोग भी गाते हैं, तो कितना वर्ष पहले भगवान की लीला बीत गई है गोवर्धन धारण की, लेकिन लगता है कि भगवान आज ही धारण किए हैं, अभी उठाए ही हैं, 7 दिन उठाए रहेंगे, तो फिर ब्रजवासियों के लिए वो कितना ताजा और हृदय आक्रामक होगा, हृदय पर चढ़ा हुआ होगा वो दृश्य। कृष्ण के इस तरह की लीलाओं को देख करके वे न्याय प्रदर्शित करके और बोलने लगे, ईश्वरत्व प्रतिपादक वाक्य भी बोल रहे हैं और सामान्य मनुष्यता का प्रतिपादक वाक्य, विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे। जब किसी मनुष्य के चेहरे पर या देवता के तो सहज मुस्कान गायब हो जाए तो इसको आश्चर्य कहते हैं, शोक नहीं तो आश्चर्य कर देना, स्मय स्मित दूर हो जाए तो विस्मित कहें उसको, स्मित है विचार करने लगे, री बाप री बाप, कहां 7 वर्ष का बच्चा और कहां इतना बड़ा पहाड़, सब विस्मय में थे, विस्मिता। तो नंद बाबा के पास वे लोग इस तरह से कहने लगे, ये आपस में बात कर रहे हैं पहले, बालकस्य जदेतानि कर्माण्यत् अद्भुतानि वै कथम अर्हत्यसौ जन्म ग्रामे स्वात्म जुगुप्सितम्। जत सोच रहे हैं क्यों विस्मय हो रहा है, क्योंकि बालकस्य जद एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि, इस बालक के जो कर्म है, बालक ही कह रहे, कृष्ण उस समय गोचारण के लिए चले गए हैं वृंदावन, तो बड़े बूढ़े गोप लोग नंद बाबा के पास आकर के कृष्ण कथा में लगे, यही कृष्ण कथा है असली, डायरेक्ट कृष्ण के विषय में बात करना है, ये मत समझिए कोई आयोजन करके सप्ताह या ये वही कथा कथा है, यही असली कथा है। लोग झूठे, कोई आयोजन नहीं था, न पंपलेट छापे थे कि कृष्ण के विषय में कथा करेंगे। नंद बाबा के पास पहुंच करके और तो हैरान का ये अर्थ हुआ कि उनका चित्त बार बार ऐसा होता है कृष्ण की मधुर लीलाओं की याद करके कि ये बच्चा ऐसा है और इधर ऐश्वर्य परक लीला याद करके फिर और मुग्ध हो रहे हैं। तो वंडरफुल कृष्ण, इस अध्याय का नाम ही दिया गया है, श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया है वंडरफुल कृष्ण। ये मनुष्य है कि भगवान है कि दोनों नहीं है, क्या है, कुछ भी हो उसी के विषय में बात कर रहे हैं। बालकस्य एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि तस्मात् ग्रामेषु गोपेषु नीचेषु असौ कथम आत्मजुगुप्सितम् जन्म अर्हति। इस बालक के, जो बालक चला गया है वन में, लेकिन फिर भी उसी के विषय में वर्तमान जैसे बात कर रहे हैं। बालकस्य, इसका बाल्य वर्तमानस्य अपि इत्यर्थ, बिल्कुल बच्चा है 7 बरस का, अथवा ये जब और पहले बच्चा था उस समय की भी याद कर रहे हैं। इसके जो कर्म अति अद्भुत कर्म है, अति आश्चर्यानी कर्माणी, इस बच्चे के जब ऐसे अद्भुत कर्म हैं, विलक्षण अलौकिक, लोक में कोई कर नहीं सकता ऐसा कर्म, यह कैसे हम नीच गोपों के बीच जन्म लेने योग्य है, कैसे जन्म लिया है? हम ग्राम में हैं, ग्राम में मतलब गांव के, गांव में रहते हैं और बकरी भेड़ गाय चरा रहे हैं, यदि इसको जन्म ही लेना था तो लिया होता सिटी में कहीं पढ़े लिखे लोगों के बीच में, ये ब्राह्मणों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, राजाओं के यहां। हम ग्राम्यों में तो हम इतने नीच हैं, छोटे हैं, कैसे जन्म ले लिया है? यह आश्चर्य की बात है, बच्चा है, हम लोगों में कैसे जन्म लिया? ऐसे जिसके अद्भुत कर्म हैं, मतलब है, जो भी हो इसकी कृपा है कि हम लोगों के यहां जन्म लिया है। जहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, जब भगवान मथुरा गए तो वसुदेव जी ने देखा कि हमारा लड़का वही वृंदावन में गाय बकरी चरा रहा था, तुरंत तो उन्होंने एडमिशन कराया, भेजा उज्जैन पढ़ने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय का लड़का राजनीति न पढ़े, कुछ पढ़े नहीं, ये ठीक नहीं। तो ये सोच रहे थे कि इसका जीवन खराब हुआ इतना दिन, जल्दी से जल्दी इसको पढ़ाना चाहिए। तो ये लोग सोच पढ़ाना क्या, भी स्लेट भी पकड़वा नहीं रहा नहीं, केवल छड़ी उठाओ और गाय चराओ। तो ये समझ रहे हैं कि हम तो नीच हैं, हम अपढ़ व्यक्ति हैं, गंवार हैं, हम गंवारों के बीच में यह कैसे जन्म लिया। आत्मजुगुप्सितम जन्म, जो जन्म इसके लिए निंदा की बात होगी, इसके योग्य नहीं है। एक बार दृष्टांत याद आ जाता है, यहां से दूर पर गांव है मल्हीपुर, उसके बाद एक कर्मा गांव है, तो मैं गया था वहां, नीचे तोशक बिछाया गया था, कोई फेस्टिवल था, कोई तिलक, हाँ तिलक था किसी का, तो बहुत साफ तोषक और उस बिछाया गया था। तो एक व्यक्ति आया, वो सामाजिक दृष्टि से कोई हीन वर्ण का व्यक्ति था, तो वो समाज था राजपूतों का, तो तुषक लगा हुआ था, मैं भी बैठा था। तो वो आए, जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आए तो मैं कह दिया कि आइए आइए बैठिए बैठिए। तो वो कहते हैं नहीं साधु जी, ये तो सिर रखने के लिए है हमारे, हम इस पर पैर कैसे रखें, हम इस पर पैर नहीं रख सकते। तो हमने ये कह दिया कि अरे तो सब कहां कहां जाता रहता है, किसके किसके तिलक में, और ये ऐसी बात नहीं है कि यह कोई भगवान की पूजा के लिए रखा गया है, ठीक है आइए बैठिए बैठिए। वो प्रणाम किए तोषक को और तोषक से नीचे बैठ गए। एक सामाजिक स्टैंडर्ड है, मैं कहा उनको बैठने के लिए, लेकिन और कोई आए वो नहीं कहे। तो हम तो उतना सामाजिक प्रथा को जानते नहीं थे, हम कह रहे थे बाकी हम बैठे हुए, कोई नहीं कहे कि बैठिए, वो नहीं बैठे। तो सबको ऐसे प्रणाम की पगड़ी उतार करके, गमछा उतार करके और बैठ गए। तो वो व्यक्ति अपने को सोच रहे थे कि हम छोटे हैं और इन बड़े लोगों के बीच में हम कैसे बैठे। तो इस तरह से गोप अपने को सोच रहे हैं कि हमारा कर्म गाय बकरी चराना है और ये करना है वो करना है, हम लोगों के बीच जन्म कथम अर्हति, इसका अर्थ यह है, यह नहीं है कि क्यों जन्म लिया, कैसी जन्म लिया, अरे हम लोगों का भाग्य देखो कि हमारे बीच में ये लड़का जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने योग्य नहीं है, इसको जन्म देवता में लेना चाहिए था, देवता में जन्म लेने लायक है, चाहे राजा के घर में या ब्रह्मर्षि के घर में जन्म लेने लायक, हम गंवारों के मूर्खों के घर में ये जन्म लिया है। मुख्य किस बात पर आश्चर्य हो रहा था, अभी अभी जो लीला हुई है उसी पर मुख से निकल रहे इनके, यह सप्तहायनो बालः करेणैके न लीलया कथम बिभ्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिवा। जो सप्त हायन, हायन का अर्थ होता है वर्ष, जो 7 वर्ष का बच्चा है, यह जो वन में गाय चराने कृष्ण गाय है उनकी याद करके कहा, यह जो सप्त हायन बाल, 7 वर्ष का बच्चा है बाल, केवल 7 वर्ष का बच्चा, एकेन करेण, एक कर से, कर माने हाथ, अनेन करोति इति कर, जिसे काम किया जाए उसको कर कहते हैं, एकेन करेण, एक हाथ से, एक कर से, एक तो बच्चा है, अब देखिए बातचीत का सिलसिला इनका, एक तो बच्चा 7 वर्ष का और उसमें भी एक हाथ से, कभी बदला नहीं हाथ की दाएं बाएं से दाएं कर लें या दोनों लगा दें, इसका अर्थ ये है ये केना करेगा। अभी अभी घटना हुई है इसलिए तत्काल में ही ऐसा अनुमान नहीं किया जाएगा कि गोवर्धन उठा लिया एक हाथ से, ऐसे ऐसे नहीं, 7 वर्ष का बच्चा और एक हाथ से हस्तांतर भी नहीं किया, हाथ नहीं बदला और उस पर भी गिरिवरम पर्वत श्रेष्ठ, इसका अर्थ परम गुरुतरम इत्यर्थ, बहुत भारी पर्वत उठाया, 7 वर्ष का बच्चा एक हाथ से और अतिशय गरिष्ठ भारी पर्वत तत्रापि लीलया, उसमें भी अनायास ही कथम विभ्रत। कैसे उठा लिया, वास्तव में यही चिंतन करना सोचना मनुष्य जीवन की सफलता है। कैसे उठाया, कैसे भी उठाया, उठाया है ये तो दिखाई पड़ रहा है। कैसे उठाया, कथम विभ्रत, स्थित इति असंभाव्यत्वेन अद्भुतत्वं व्यंजितम्। ये असंभव बात है लेकिन इसने उठा लिया। उठाए हो तो आपने देखा ना ठीक से, 7 दिन तक उठाए रहा। इस कथन के द्वारा अद्भुतत्व व्यंजित हो रहा है, ये अद्भुत बात है, आश्चर्य। लीलया धारणे दृष्टांत, अनायास ही धारण कर लिया, इसके लिए दृष्टांत दे रहे। किस तरह धारण किया, गजराट पुष्करम इव, जैसे हाथियों में श्रेष्ठ गजराज, पुष्करम कमलम इव, जैसे हाथी अपने सूंड में कमल धारण कर ले उखाड़ करके, ऐसे इस पर्वत को उखाड़ा और धारण कर ले। और मनुष्य कई कई बातों का स्मरण करके आश्चर्यचकित होता है, चाहे हंसता है चाहे रोने लगता है, ये सब उसकी दुर्दशा है वास्तव में। तो कृष्ण के विषय में सुन करके आश्चर्यचकित होना या हंसना या उनके लिए रोना, ये सब जीवन का स्वरूप होना चाहिए, यही जीव का स्वरूप है। तो ये गोपगण आपस में श्री कृष्ण के विषय में इस तरह बात कर, कैसी धारण कर लिया, उम्र 7 वर्ष की, गिरिवर धार लियो अंगुली पर 7 वर्ष को रसिया। कुछ वर्ष और बढ़ जाता तो कुछ वजन हो सकता था। ऐसे इनका कहने का आशय नहीं कि तब कोई 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष का हो गया तो धारण कर लेगा, नहीं, वो तो कोई धारण कर ही नहीं सकता है, लेकिन उसमें भी ये 7 वर्ष का धारण कर ले। 7 वर्ष के बच्चे में बल और बुद्धि बहुत कम रहती है, शरीर का बल कम रहता है, बुद्धि भी कम रहती है, और उससे छोटा रहता है तो और बुद्धि कम रहती है ना। जन्म के बाद धीरे 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 बुद्धि का विकास होता है, कुछ दिन में तब स्लेट पकड़ता है, पेंसिल, कौआ ये करते करते घिसते घिसते तब स्कूल में और पढ़ता है। इसके बाद धीरे धीरे परीक्षाएं देता है, कंपटीशन में बैठता है, और इसके बाद अब रेल चला रहा है, वाहन चला रहा है, कंप्यूटर रन कर रहा है, तो लगता है कि गर्भ से ही यह सीखा हुआ आया है ना। वो दिन आदमी को याद नहीं है कि बैठना भी नहीं जानता था, स्लेट पकड़ना भी नहीं जानता था। एक गोप लोग सोच रहे हैं अभी तो 7 वर्ष का नन्हा बच्चा है और इतना भारी पर्वत और वो भी एक हाथ से, और वो भी 7 दिन 7 रात, ये कहना सब बाकी ही रह गया है। इसमें सब बाकी है, अकस्मात उठाया और पटक देता तो वो भी आश्चर्य ही है, उठा लेना रख देना, लेकिन उठा करके 7 दिन टांगे रखना, जो वजन ढोए हैं उनको पता है कि थोड़े देर में ही कितना अपना सामान लेकर के चलने पर प्लेटफार्म में कसर मसर करने लगते हैं, कुल्ली करो कुल्ली करो, ये करो ये करो। हम लोगों को अनुभव है कि आटा पिसाने में, गुड़िया से कुदरा जाने आने में नानी मर जाती थी। अभी सयाने होने पर, और ये 7 बरस का बच्चा 7 दिन, आदमी वजन कुछ उठा सकता है, उठा सकता है अपने शक्ति के अनुसार, लेकिन कितना देर, 10 मिनट 1 घंटा, ऐसे नहीं कि दिन भर उठाए ही रहे तो मर जाएगा बिल्कुल। कि ये 7 दिन 7 रात, अच्छा बीच में कहीं रह करके नाश्ता पानी कर लिया होता ये भी नहीं, सोया नहीं, बैठा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, ताकि लोग करना क्या चाहते हैं। नंद बाबा से कुछ पूछ रहे हैं कि लड़का है क्या, वास्तव में कोई देवता है कि भगवान है, हमको तो शंका हो रही है कि ये साक्षात ईश्वर है, ऐसा कोई देवता भी नहीं कर सकता, मनुष्य तो ऐसे कर ही कैसे सकता है। नंद बाबा के यहां जाकर यही है न्याय, न्याय प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह मनुष्य नहीं है, इसके लिए न्याय दे रहे हैं। परंतु मनुष्य है इसके लिए भी न्याय है कि बालक, बालक भगवान ऐसी लीला किए हैं जिनको भगवान मान, भगवान विष्णु बलि महाराज के यज्ञ में आए तो सब जगह बात फैली है कि जब उनको दान में जमीन लेना था, तीनों लोग लेना चाहते थे, पहले नाटक किए कि ब्राह्मण हूं, मुझको थोड़ी सी जमीन चाहिए कुटिया बनाने के लिए, लेकिन जब नापना हुआ तो एक कदम उठाए तो पूरा स्वर्ग, और एक दूसरा पूरा पाताल, और शरीर फैलाए तो भर गया पूरा आकाश, तीसरे के लिए जगह नहीं मिली। तो बलि महाराज को डांट रहे हैं, तुम्हारे पास जब 3 पग भूमि नहीं थी तो दान देने का झूठा वचन क्यों दिया। तो बलि महाराज ने कहा कि मैं अपनी बात झूठी नहीं होने दूंगा, तीसरा पैर हमारे सिर पर रखिए, हमको नाप लीजिए, मेरा जो कुछ था आपने ले लिया लेकिन मैं को नहीं लिया, तो मैं आप मेरा देह ले लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तो भगवान तुरंत ही तीसरा पैर बलि महाराज के सिर पर रख, तीसरा के बेरिया बलि जी देलन सिर रोपी। लेकिन ये अगर भगवान भी कैसे इसको मान सकते हैं, अगर भगवान होते तो पर्वत उठाने के लिए बहुत भारी शरीर प्रकट किए होते, लेकिन ये है बाल। एक दृष्टि से बिल्कुल बच्चा है, दूसरे दृष्टि से इतना भारी पर्वत उठाना। नंद महाराज आपके लड़के के विषय में हम लोगों को बहुत शंका हो रही है कि क्या है, और शंका एक दुख है, कोई एक निश्चय होता तो ठीक रहता, लेकिन हम और दुख इसलिए है कि मान लीजिए हम अगर इसको भगवान मानते हैं, भगवान मानेंगे तो भाई इसे हम सतर्क रहेंगे, कोई अपराध न हो जाए, इसे हम गाय नहीं घेरवाएंगे, सेवा नहीं करवाएंगे, और यदि हम इसको बच्चा मानते हैं, गाय घेरवाएं, सेवा करवाएं, तो कहीं ये भगवान न हो कि अपराध लग जाए। और सचमुच के ये बच्चा होगा, ये बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है, कैसा बच्चा है, इसका आगे पीछे का कुछ पत्रा दिखवाए हैं किसी ब्राह्मण से पूछे हैं, आजकल तो साधारण आदमी भी ऐसे ठग घूमते रहते हैं कि हम ज्योतिषी हैं, हाथ दिखाइए, तो कहते हैं हाँ आपके भाग में है, या आप शनिवार को ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, तुरंत आप पर बहुत संकट आने वाला है, और आप पहले बहुत बड़े व्यक्ति थे, भविष्य में आपको बहुत बड़ा धन मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले कुछ दान देना होगा ये सब सिखाते हैं। हम भी एक बार जीटी रोड पर टहल रहे थे अपने गांव के पास, तो वहां एक होटल है, होटल के निकट गए तो एक पंजाब के व्यक्ति थे, ट्रक रोके हुए थे, तो कहे कि बाबा जी आप हाथ देखते हैं, तो हमने कहा नहीं हम हाथ नहीं, लेकिन साथ में सहदेव बाबा थे, वो कहे कि नहीं नहीं वो हमको इशारे कहिए कि हाथ देख जानते हैं जानते हैं। तो हमने कह दिया कि हाँ कुछ जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है ठीक है देखिए देखिए देखिए। तो वो 10 रुपए निकाल करके रख करके हाथ दिखवा रहे थे। तो मैं कहा कि आपके हाथ में एक बहुत बैड रेखा है और उससे आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, ये हो सकता है। अरे तो बाबा जी कोई उपाय है? हाँ उपाय है, उपाय बहुत सीधा है, उपाय बहुत सरल है, एक मंत्र का जप करना होगा आपको। और आप मांस खाते हैं? तो हाँ वो तो छोड़ दीजिए एकदम, मांस शराब मत खाइएगा पीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र है, आप लिख लीजिए कागज पर। तो पेन मंगाया तुरंत, तो ये बाबा जी आप ही लिख दीजिए। तो हमने लिखा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। इसकी 5 माला रोज कीजिए, 5 माला करने में 1 घंटा से कम ही लगेगा, मैं बताया उनको, लेकिन इतना करेंगे तब, नहीं तो बहुत भयंकर रेखा है। तो वो मान गए और इसके बाद 51 रुपया अलग से दिए। तो सहदेव बाबा लेकर के कहे चलिए अब अमरूद खरीदा जाएगा। और जपते होंगे, सिख नहीं थे, हिंदू थे, पंजाबी, इस तरह से। तो नंद बाबा से भी गोप लोग पूछ रहे हैं कि ये लड़का आगे चलकर क्या होगा या पहले का क्या है, ये इसलिए जानना चाहते थे कि इसके साथ हम लोग क्या व्यवहार करें, भगवान का व्यवहार करें कि मनुष्य का व्यवहार करें। गोद में नहीं लेने पर, अच्छा से प्यार नहीं करने पर ये मुरझा जाता है, मुखमलिन हो जाता है। यदि हम मनुष्य का व्यवहार न करें, इसे स्नेह न करें, तो इसे सुख नहीं मिलता है। और भगवान समझ कर वैसा व्यवहार न करें तो अपराध होगा, ये शंका उनको थी। तो पहले तो अभी चित्त पर छाया हुआ है तत्काल की लीला गोवर्धन धारण की, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। इसके बाद अब कहते हैं तो के नामीलिताक्षेण पूतनाया महौजस पीत स्तन सह प्राण काले नेव वयस्तन। ये तो अभी अभी की बात है, पूर्वमपि बाल्य पहले भी अतिशय बच्चा था, 6 दिन का था ये। पूर्वम अति बाल्ये दुर्हत्वे न तत्कृतत्वे न संदिग्धा अपि पूतना बधादिनी अधुना साक्षात श्री गोवर्धनो धरण दृष्ट्या तदियानी एव इति प्रत्यभिज्ञायतान्यपि आह। पहले जो पूतना बधादि ये देखे थे, संदेह में हो गए थे, लेकिन श्री नारायण ने किया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद ने किया, नंद बाबा के पुण्य ने किया, ऐसा मान लेते थे। लेकिन गोवर्धन धारण को देखे हैं तो उस दृष्टि से अब ये इस निर्णय पर आ गए कि नहीं नहीं नहीं, पूतना का वध भी इसी ने किया था, जो 6 दिन का था सात बरस का जब पहाड़ उठा सकता है तो छह दिन का नहीं मार सकता है। कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़े बल में हो गया। अब उस समय की लीला का पूतना उद्धार की लीला का स्मरण करके कहते हैं बस बस इसी का काम था, इसी ने मारा था वास्तव में। ये गोवर्धन धारण नहीं किए होते तो अब तक लोग यही मानते कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था या नारायण का आवेश था। आगे भी यही मानेंगे, ऐसा कुछ भी वर्णन करें नंद बाबा वो बदलने वाले नहीं। मिलिताक्षण आ मिलिताक्षण जब पुतने आए थे तो आपको याद है ना, स्त्रियों से पता लगा, मां जसोदा से चाहे रोहिणी से और सबसे पता लगा था, उसको ये कह रहे हैं आ मिलित अक्षण। मिलित का अर्थ है मिलित बंद और अक्ष माने आंख। जब छह दिन का था उसमें आंख बंद किए थे थोड़ा थोड़ा आंख, आ माने सम्य ये पूरा बंद थोड़ा, आ माने थोड़ा भी होता, ईसत भी होता है और आ माने सम्यक भी होता है। तो आंख बंद किए किए पुतना को मार डाला, आंख बंद किए थे। ये भी एक लीला है, भगवान पुतना को देख करके किस मूड में थे, किस पोस्चर में थे, ये सब ये भी कृष्ण लीला है, कृष्ण कथा है। ब्रजवासी आज याद कर रहे हैं, सातवें वर्ष में भी ताजा बिल्कुल, पुतना के वध के समय आंख बंद रखा था। तो आ मिलित का अर्थ है पूरा पूरा बंद अथवा आ का अर्थ है ईसत बंद और धन्यमिलित नेत्र। इसके द्वारा बाल्य कौतुक और अत्यंत बाल्य का बोध हो रहा है। अभी बिल्कुल बच्चा था, छह दिन का, आंख बंद किए रहता। बच्चे शुरू शुरू में बहुत कम आंख खोलते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा सोए रहते हैं तो ज्यादातर आंख बंद ही रखते हैं, कभी कभी खोल करके अच्छा से देखते। जब ये भी सोया था आंख बंद थी इसकी, इसका मतलब अतिशय बच्चा है अथवा ईसत अक्षी निमीलन मात्रणा, थोड़ा सा आंख बंद करके ही। इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि अति शीघ्र वध किया और अनायास, कोई प्रयास नहीं किया पुतना के वध में, यह बच्चा अति शीघ्र मतलब थोड़ा आंख बंद करके काम कर दिया। या अमिलिताक्षण आंख बंद नहीं किया, देखते देखते अर्थात निरीक्ष माने नहीं थे, ये देख रहा था पुतना पर, इसके द्वारा निर्भयत्व तो सूचित हो रहा है। ये बच्चा डरा भी नहीं, पुतना जैसी राक्षसी को देख करके डरा नहीं, और तोके न अनेन बालके न, ये अमिलिताक्षण या अमिलिताक्षण तोक का विशेषण है, अमिलिताक्षण तोके न। एक तरफ तो बच्चा है तोक छह दिन का, दूसरे तरफ महौजसह पुतना महाबलशाली पुतना, महाबला महाबल वाली पुतना, महाबलशाली पुतना के प्राणै सहस्तन पिता, स्तन तो पिया ही, स्तन के साथ प्राण भी पी गया, प्राणों के साथ स्तन पिया है। जब मारने का तरीका भी अद्भुत है कि उसके स्तन को पिया और स्तन क्या पिया, उसके प्राणों को भी पी गया। ये प्राण थोड़े पिए थे कृष्ण, कृष्ण कोई उसके छाती को पिए भी नहीं थे, केवल होठ लगाए थे, उस राक्षसी का खून पीती थी, मांस खाती थी, उसका दूध कृष्ण पिएंगे ऐसा नहीं कर सकते। तो गोप आपस में बात कर रहे हैं कि वही देखो पुतना का वध, एक एक बात को वो घंटों घंटों कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वहां कोई टाइमिंग था या बंद करो कथा खत्म हो गया अब प्रसाद पाने का टाइम हो गया। कृष्ण कथा चल रही है तो चल रही है। जैसे आजकल भी देखा जाता है कि आदमी जब दो चार बात करते हैं, एक साधारण बात की व्याख्या करते करते कितना एके बतिया सारी रतिया ऐसे चलता रहता चलता रहा चलता रहा। तो श्री कृष्ण के भी विषय में इस तरह आसक्ति तद गुणाख्यान है, उनके गुणों के वर्णन में उनकी बात करने में आसक्ति है ना गोपों की, चल रही है आसक्ति। पूतना महाओजस, जिसमें महाओज था महाबल, जो मरते समय अपने शरीर को इतना प्रकट की थी, उसकी आवाज सुने थे ना सब गिर गए थे। बड़े बड़े लोग जब वो आवाज की चिल्लाई हाय रे आया है तो लगा सब पर बिजली गिर गई, सब सब जमीन पर गिर करके कुछ देर बेहोश हो गए उसकी आवाज से, इतनी भयंकर राक्षसी थी। उसको इसने आंख बंद करके मारा डाला। एक आंख बंद करके कोई काम कर देना मुहावरा है, इसका मतलब आसानी से तो कभी कभी कोई कोई कड़ी दवा माता जी देती हैं, बच्चे को कहती हैं बच्चों आंख बंद करके पी जा आंख बंद करके पी देख देखो मत खास करके चिरायता का काढ़ा जो कड़ा होता है हम लोग उसको पिए हैं, और हमारी माँ ने भी कहा है कि आंख बंद करके पी जा, पीने में तीता लगता है। तो आंख बंद करके पूतना जैसी बलवती राक्षसी को इसने मार दिया। आसानी से सुगमता से मार डाला, ऐसा नहीं था थप्पड़ भी चलाया हो लात भी चलाया हो, बिल्कुल ओठ से पिया और मार दिया। उसका अस्तन क्या पिया, अस्तन के साथ प्राण भी पी गया। प्राण पीने का मतलब है कि मार दिया उसको, मर गई। तो जब तृणावर्त आया तो उस समय तो लोग कहते हैं देखो ये राक्षस स्वयं ही इस बच्चे के पास आते हैं, लेकिन इस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसके पास आकर के राक्षस वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रचंड अग्नि के पास आकर के फतिंगे अपने आप जलकर मर जाते हैं। कोई अग्नि बुलाने थोड़े जाता है कि हे फतिंगा आओ हमें मारो, फतिंगे स्वयं ही उड़ उड़ कर जाते हैं, उड़ कर जाते हैं पंख जल जाता है छटपटा करके मर जाते। ये बेचारा कोई देश भी नहीं जानता है कि इधर मथुरा है कौन से कौन है क्या है, इसको कुछ भी पता नहीं, और उधर से भेज रहा है वो लोग आते हैं और आ करके नष्ट हो जाते। उसने गोवर्धन धारण लास्ट लीला का स्मरण कर इसको दोनों बार याद करेंगे, इस कथा के शुरू में भी और अंत में भी प्रवचन के, और बीच में अब क्रम से भगवत चरित्र चालू किए क्रम से, प्रथम चरित्र है पूतना वध क्रम से चालू किए। ऐसा नहीं है कि अब दो चार मिनट में गिना करके अब बस आश्चर्य खत्म हो गया। आश्चर्य है ये है, वो आश्चर्य क्या है, वास्तव में कृष्ण प्राण गोपों की आसक्ति प्रकट हो रही है प्रत्येक श्लोक के द्वारा, लीला वर्णन हो रहा है। आ मिलिताक्षेण तो के न पूतनाय प्राण सहस्तन पीत, इसमें भी उदाहरण दे रहे हैं काले ने वयस्तन, ये अनायासत्व का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे काल किसी जीव के शरीर की अवधि को पी जाता है, जैसे अस्तन में दूध रहता है तो बच्चा अस्तन पीता है, लेकिन अस्तन ही नहीं पी जाता है, स्तन में जो दूध है उसको पीता है। ऐसे ही काल शरीर के अवधि को पी जाता है, आदमी का शरीर रहता है तब तक वो आयु बीत जाती है बस शरीर समाप्त हो जाता है। तो जैसे काल तनु हो शरीर के वयह उम्र को पी जाता है, पता भी नहीं चलता है। काल यहां आकर के किसी पर हथौड़ा नहीं मारता है, है ना? ऐसे ही जी रहे हैं तब तक मरने का टाइम आ जाता है। वो रोज पीता रहता है धीरे धीरे, एक मिनट दो मिनट, एक सप्ताह दो सप्ताह, पक्ष महीना साल पीता रहता, पीते पीते अंत में खत्म। तो जिस तरह से काल शरीर शरीर की अवधि को पीता रहता है, उस तरह से ये पी गया। पुतना का स्तन, पुतना का सब कुछ वैसे ही था, पर प्राण पी गया। इसे मतलब काल के साथ उपमा दे रहे, काल जिस तरह से बलवान है और अनायास काम कर देता है, सबकी उम्र बीत जाती है, इस तरह से देखते देखते आंख बंद करके और उसका प्राण पी गया। कथम इतिहास सर्वत्र अग्रे अग्रे अपि अनुवृत्ते। कथम जो पहले के शब्द आया है, सभी श्लोकों में उसकी आवृत्ति होगी आगे। कैसे पी गया, बच्चा है और हलाहल जहर लगाकर आई थी, उतनी विशाल राक्षसी उसको मार दिया, छोटे छोटे हाथ इसके, छोटा मुख। ये वास्तव में मनुष्य को इन्हीं बातों पर आश्चर्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण देखने में एकदम छोटे छोटे बच्चे, देखने में क्या छोटे बच्चे थे ही, छह दिन के, और इतनी विकट राक्षसी को मार दिए बिना प्रयास के। पहलवानों को भगवान ने बाद में मारा मथुरा में, जैसे श्री बलराम जी ने मारा तो एक को तमाचा मारा। अगर उस समय तो 10.5 वर्ष के थे, नहीं हाँ 10.5 वर्ष के थे, 11 वर्ष के। वो भी कोई बहुत कठिन तमाचा नहीं था, लेकिन वो एक ही तमाचा में मुष्टिक चक्कर खाता हुआ, खून फेंकता हुआ गिर कर अखाड़ा में मर गया। लेकिन ये 6 दिन का बच्चा, ऐसा भी नहीं कि मुंह में दांत हो कि दांत भी गड़ा देता स्तन में, दांत भी नहीं था मुख में, छोटा बच्चा। ये सब कैसे हुआ? जाकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? उनसे तो पूछे ही नहीं सकते। उनसे कृष्ण से पूछने पर कहते कि अब क्या कह रहे हैं, क्या कहे, कब किया था? मैं तो कुछ नहीं किया था, तो सीधा कह देते। तो आजकल के लोग आश्चर्य नहीं करते हैं, सीधे कह देते हैं ये सब कल्पना है, लिखा गया है, ये सब हुआ है नहीं हुआ। आजकल के लोग इतने भोथर बुद्धि के हो गए हैं कि वास्तव में कुछ सूक्ष्म चीज पकड़ नहीं सकते, तो जो देखते हैं बस उसी को मानते हैं। ये गोप लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग भी कर सकते हैं, भाई कैसे मार दिए आंख बंद करके छोटा सा बच्चा। यदि कोई श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है तो इन लीलाओं को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भगवान की लीलाएं हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मानने से कृष्ण भगवान होंगे, वे भगवान हैं चाहे मानो या मत मानो, वे ईश्वर हैं, भगवान हैं, सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। जो श्रद्धालु भक्त जन इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, तो वही लीला का आनंद ले सकते हैं, वे समझते हैं। पूतना वध की बात श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में 6ठे अध्याय में कही गई, पूरा 1 अध्याय में। कैसे पूतना आई, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर लिया, वे झूल रहे थे, रसोई घर में थे, पलंग पर थे, उसको देख करके भगवान ने आंखें बंद किया। देख करके मतलब आ रही है ये सोच करके, गांव में जब आई बहुत सुंदर मेकअप की थी, सुंदरी नारी बनी थी। जब वो मां यशोदा के घर में प्रवेश कर रही थी, उसके पहले ही कृष्ण आंख बंद कर लिए। वे आंख बंद किए हैं तो इस पर अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षा आचार्यगण किए हैं। श्रीपद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि उस पापिनी का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जो मां का रूप बना करके आई है, यह दिखा रही है कि मैं स्तन पिलाने आई हूं, बच्चे का पालन करने, और हृदय में इतना दूषित भाव है, छाती में हलाहल जहर है, तो भगवान ऐसे पापनी का मुख नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए मुंह बंद कर लिया। और एक भक्त कहते हैं, हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि अरे प्रथम बार में ही एक स्त्री से भेंट हुई और हमें, हम तो यहां माखन खाने के लिए आए, दही पीने के लिए ब्रज में आए, दूध पीने के लिए, लेकिन प्रथम बार हमको विष पीना पड़ गया। तो स्तन में विष लगा करके आई थी, तब भगवान कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे कि आपका काम है विष पीना, ध्यान करने लगे। आंख बंद किए तो क्या, वो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि आप अपना आहार ले लीजिए, अब हमको दूध पीने दीजिए। देवता लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे समुद्र मंथन में कि हमको उबारिए, हम इस विष से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव अपनी इच्छा से उसको पी गए। वो लोग पीने के लिए नहीं कहे, वो तो कह रहे थे कि इसके प्रभाव को खत्म कर दीजिए, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमको बचाइए। तो भगवान शिव पार्वती जी से बात किए कि ये सब बचना चाहते, मैं कहां विष को फेंकूं, सब जगह जीव है, तो मैं इसको पीना चाहता हूं इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, वो तो जानती थी अपने पति का प्रभाव, इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो उन्होंने अनुमोदन कर दिया। अगर आज के युग में कोई पति कहे कि हम अब विष पीने जा रहे हैं तो कोई पत्नी कहेगी कि पी लीजिए, अरे ना बाबू ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप मत पीजिए, मत पीजिए। लेकिन माता पार्वती जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु वहां पर थे, वे प्रशंसा किए शिव जी की, वाह इसको कहते हैं परोपकारी, दूसरे के हित के लिए, सारे संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव जहर पी गए। तो जहर इतना भयानक था कि उनके गोरे शरीर को, गोरे शरीर में कंठ को काला कर दिया, जला दिया यहां, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। लेकिन उसके चलते शिव जी की सारे जगत में प्रशंसा होती है, जहां जाते हैं भगवान शिव तो देवता लोग या मनुष्य, सभी मनुष्यों को तो दर्शन होता ही नहीं है, देवताओं के यहां जाते हैं तो सब लोग कहते हैं वो कंठ काला हो गया है, ये जहर पिए थे एक बार संसार की रक्षा के लिए, तो जस ही बढ़ा। तो हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान ध्यान करने लगे कि जहर पीने का रस जानते हैं शिव जी, तो अपना भाग ले लें, हमको दूध ही पीने दे ब्रज का, इसके लिए शिव जी का ध्यान करने लगे। और फिर हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की बात देखने लगे कि इस जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं, पहले कुछ पुण्य किया है क्या, पहले कुछ किया है, अथवा जब संकट आता है, दूसरा परीक्षा कर रहे हैं कि जब किसी पर संकट आता है तो उसमें योग करना चाहिए। योग का मतलब होता है भगवान का ध्यान, तो बड़े बड़े संकट चले जाते हैं। तो भगवान मानो योग करने लगे कि अब हम इस संकट से कैसे बचेंगे। कई कई भाव लिखा गया है, तो ये बात प्रसिद्ध है कि पूतना के पहुंचने पर भगवान कृष्ण आंखें बंद कर लिए थे। ये ब्रजवासी तो उसी गांव के, उसी घर के हैं, तो उनमें तो कितनी बातें फैली होगी। उसको कहे देखो उस दिन पुतना आई थी, ये बच्चा 6 दिन का था, आंख बंद करके उसका प्राण पी गया। उस दिन नहीं कहे कि ये प्राण पिया, आज कह रहे हैं कि यही मारा है पुतना को गोवर्धन धारण करने के बाद यही मारा। जैसे काल सबकी उम्र खत्म करता जाता है अनायास ही, वैसे अनायास ही मार डाला। तो इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि यह हम ग्राम्यों में गमारों में कैसे जन्म लिया, किस कारण से, क्या सोच करके, तो हम लोग में जन्म लेने लायक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब क्रम से प्राप्त एक लीला जो ऐश्वर्य परक है उसकी याद कर रहे। हिन्वतोध शयानस्य मास्यस्य चरणाउदक अनोपतद विपर्यस्तम रुदतः प्रपदाहतम। एक बार जब यह मास्यस्य मास भर का था, महीने भर का था, 3 महीने का, जब भगवान शकटासुर का वध किए थे, शकट को उलाटे थे, तो उसमें 3 महीने के थे। तो मास्यस्य का अर्थ है कि महीने भर का था, अभी साल भी नहीं आया था। अगर 1 साल हो गया तो कहते कि वार्षिक है, वार्षिकस्य कहते मास्यस्य कहते, मास भर का, 1 महीने का था, 3 महीने का था। 3 महीने के जब कृष्ण हुए तो करवट बदले, नहीं तो लड़के तो बस ऐसे उतान पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, है ना। लेकिन 3 महीने के कृष्ण हुए तो करवट बदले अपने आप, किसी के बदलने से नहीं, अपने आप। तो बहुत खुशी की बात थी कि लड़के को कोई पोलिया वोलिया नहीं है, ठीक है, अंग अच्छा है। तो माँ जसोदा ने उत्सव किया बच्चे के करवट बदलने पर, बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। तो घर में उत्सव हुआ, उत्सव का मुख्य अंग था भोजन, गान बजान, दान सब। तो घर में जगह नहीं रही, स्त्रियां जुटे थे, ब्राह्मण जुटे थे, सब गान बजान हो रहा था, बधाई बज रही थी, खान पान। तो कृष्ण के लिए कोई और घर में जगह नहीं, सब लोग भरे पड़े थे। तो कृष्ण को घर के बाहर अंगना में, वो भी मूल अंगना में नहीं, बाहरी आंगन में, जहां गाड़ी खड़ी की जाती थी, बैलगाड़ी, जिसमें 6-6, 8-8 बैल लगते थे, शकट बहुत भारी, आजकल जैसे वो 18 पहिए वाला या कितना पहिए वाला ट्रक होता है बड़ा, उस तरह का वो ट्रक ही समझिए, चौड़ी गाड़ी और उस पर बड़े बड़े बर्तन और उनमें घी भरा हुआ था, दही भरा हुआ था, अभी तत्काल में यूज करने के लिए कई सामान लदे हुए थे, भरा था एकदम, और पार्किंग में खड़ा था बाहर। तो कृष्ण को माँ जसोदा ने वहीं सुलाया और बच्चों को कहा कि इसकी देखरेख करते रहना। माँ जसोदा व्यग्र हो गई लोगों को खिलाने में, पिलाने में, दान दक्षिणा देने में। तो बच्चों कहे कि नींद आ रही थी कृष्ण को, दूध पिला दी, नींद आ रही थी सुला दी। अधः शया नस्य, अधः नीचे सोए थे, किसके नीचे, शकट के नीचे, उस महाबैलगाड़ी के नीचे सोए थे, घर में और कहीं जगह नहीं थी। तो कुछ देर के बाद कृष्ण उठे, उसी की ये गोप लोग याद कर रहे हैं, कुछ देर के बाद नींद खुली तो रोना चालू किया, रोने लगे, खूब रो रहे थे। तो भाव तय था कि भूख लग गई थी इसलिए रो रहे थे, बच्चे को जल्दी भूख लगती है, रो रहे थे। लेकिन माँ इतना फंसी थी कि वो सुन नहीं रही थी बच्चे की आवाज, और 8-10 बच्चे वहां घेर करके थे देखने के लिए लगभग कृष्ण के ही उम्र के, कुछ बड़े बड़े थे। तो रो रहे थे रो रहे थे। रोने का भाव श्रीपद बल्लभाचार्य जी कहते हैं, भगवान सोच रहे हैं कि सबको भोजन मिल रहा है और मुझको कोई ध्यान नहीं। तो भगवान का भोजन तो पूरी सूरी था नहीं, वो तो दूध केवल पीते थे, अभी 3 महीने के थे। तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि मैं लक्ष्मीपति हूं और यहाँ हमारे घर में सब लोग खा रहे हैं, हमको रहने की भी जगह नहीं है, भोजन भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो भगवान रोवे नहीं तो क्या करे। रो रहे और मां सुन नहीं रही थी क्योंकि बहुत गान बजान हल्ला हो रहा था, उत्सव चल रहा था, तो नहीं सुनी। तो रोते रोते स्वाभाविक है, जैसे बच्चे पैर उछालते हैं ऐसे कहाँ कहाँ करते रो रहे। और रोते रोते चरणों हीनवतः, दोनों चरण चाल रहे थे, उछालते उछालते उसमें से एक पैर का पैर को थोड़ा सा बढ़ाए, प्रपद पैर के अगले भाग से आहतम थोड़ा आ मैंने सम्य ईसत थोड़ा सा टच किए। ये लोग सब वर्णन करेंगे पैर और रोते हुए पैर हिनवत चालयत पैर चला रहा था और प्रपद से अगले पैर से थोड़ा सा उंगली से आहत थोड़ा सा टच किया तो सकटम विपर्यस्तम उल्टा हो गया, उल्टा होकर के धड़ाम से गिरा। भी क्या आश्चर्य देखो, उतना भारी ट्रक उतना बैल भारी सकट और विपर्यस्तम पैर टच स्पर्श होते ही वो उल्टा होकर के और गिरा धड़ाम से, जितने बर्तन से सब फूट फाट गए, रस बह गए, घी दही और सब। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि रसो वही सह, आज तक उपनिषद कहता है, सब लोग कहते हैं कि मैं रस हूं, तो मेरे ऊपर ये रस क्यों आ गया, मैं असली रस हूं। भगवान ने पटक दिया रस को, हमसे बढ़ करके कोई रस नहीं है। सब ध्वस्त हो गई, गाड़ी भी टूट गई, उसका फोड़ क्या क्या होता है सब टूट टट गया, तो धूला उला सब ध्वस्त। और अब धड़ाम से आवाज जब फैली, धड़ धड़ तड़ तड़ टूटने का, तो फेस्टिवल बंद और सब लोग कृष्ण के पास आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसी कैसी गाड़ी पलट गई, कैसी हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई राक्षस आकर पलट गया क्या हुआ, कोई हाथी आया था, सब आपस में इधर विचार करने लगे, अरे क्या हुआ कैसे गाड़ी पलट गई कैसे पलट गई कैसे पलट गई। तो वहां बच्चे कुछ थे तो उन लोगों से लोग पूछने लगे, तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग कहाँ थे, देखिए कैसे पलटी गाड़ी। कैसे पलटी, तो बच्चे कहते ये रो रहा था और पैर ऐसे ऐसे कर रहा था, थोड़ा सा छुआ तब तक, तो वो कहते तब तक इसने पलटा है, अरे बेकार बच्चे। ठीक कहते, बच्चों को बुद्धि नहीं होती, उस लोग तो बोलने नहीं दिए, चुप। यही पलटा है। जो बेचारा स्वयं ही भूख से छटपटा रहा है रो रहा है वो पैर से मारेगा। इसने नहीं मारा, लोग माने ने कोई नहीं माना। फिर माँ जसोदा अब खिलाना पिलाना क्या करे, बच्चे को उठा करके रखी, गरीब हे नारायण हमारे बच्चे पर नहीं गिरा सकट बच गया। उसको गिरना चाहिए तो वो कृष्ण उसके नीचे सोए थे और उन पर नहीं गिरा, उनके पैर से लग करके ऐसे उलट करके गिरा दूर उन पर नहीं गिरा। अरे वही गिराए थे तो क्यों अपने पर गिरने दे। लेकिन अभी तमाशा हो गया या फेस्टिवल जो था पूरा भय में बदल गया, यहाँ अपशकुन होने लगा। अब सुकून होने लगा। बताओ कोई ट्रक खड़ा हो और बिना चल ऐसे खड़े खड़े उल्टा उलट जाए तो कितनी कितनी भारी शंका हुई, क्या हो रहा है, हो ना हो कोई न कोई राक्षस या भूत पटक दिया, सोच रहे हैं। बच्चे वहीं साक्षी हैं। हरीश्वरी जब जब कहते हैं कि बच्चे कहे कि यही रो रहा था इसी के पैर से लगा, इतना ही कहे, ये नहीं कहने की हिम्मत है कि इसी ने पटका, तुम लोग ने क्या देखा क्या देखा, बोलो बोलो तो कहे, देखे यही रो रहा था, पैर ऊपर कर रहा था और पलटने की क्रिया नहीं बता सके क्योंकि बच्चे भी इतना कन्विंस थोड़े हैं कि इसी ने पटका होगा। और कृष्ण लीला को बता रहे कि यह पैर उछाल रहा था और इसके बाद तब तक धड़ाम से गिर गया। अब कौन पटका, कैसे हुआ, बवंडर आकर के काय कुलाट दिया, क्या किया, हम लोग नहीं जानते, हम लोग और किसी को देखे नहीं। ब्रजवासी पूछ रहे थे कोई आया इधर से, कोई आतंकवादी इधर से आया, लेकिन नहीं कोई आया नहीं इधर से, कोई नहीं आया। क्या देखे यहां, तुम लोग देखने के लिए बैठे थे ना, क्या देखे क्या देखे, पैर उछाल रहा था, रो रहा था, और वास्तव में वही भर देखे ही थे, वो दुनिया का दृश्य काहे को देखने जाए, वो लोग और कुछ नहीं देख रहे थे, कृष्ण के मधुर लीला सौंदर्य पर आकृष्ट रहते थे। कभी कभी कोई लीला में रस उत्पन्न करने के लिए कोई माछी उड़ती थी तो उसको हुलाया करते थे, कृष्ण पर कोई मक्खी न बैठे, वो भी लीला की पुष्टि के लिए ही कोई मक्खी, कोई भक्त ही मक्खी के रूप में बन करके आते थे, तो ये बच्चे हटाते थे, सो जाए, अच्छा से सो जाए, तब तक बीच में जग गया और रोने लगा। तो उसकी याद गोप लोग कर रहे हैं कि उस दिन देखो, एक तो नीचे सुलाया गया था, अधः शयानस, शकट बहुत भारी था, पैर को चला रहा था, अभी रुदत रोते हुए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई इसका प्लान होगा उलटने का, पैर मारने का। पहली तो बात है कि मास्यस्य 3 महीने का था और उस पर भी अधः शयानस्य, नीचे सुलाया गया था और ऊपर से तत्रापि रुदत रो रहा था, स्वयं ही भूख से व्याकुल था, रो रहा था। अस्य बालस्य, और बच्चा है 3 महीने का, रो रहा था और पैर से थोड़ा टच किया, प्रपदा आहतम, थोड़ा सा स्पर्श किया, बस सकटम विपर्यस्तम, उल्टा होकर के धड़ाम से गिर अपतत, उल्टा होकर के अपतत गिरा, ऐसे नहीं केवल उलट गया, ऐसा नहीं है, उल्टा होकर के गिरा धड़ाम से। इसका अर्थ अपतत का अर्थ है कि उल्टा होकर के, और इसने पैर से मारा पैर से लगा तो सकट ऊपर गया, बेग से ऐसे लगा कि ऊपर जा करके उल्टा होकर के गिरा धड़ धड़, इसे गिरा। प्रपदा आ ईसत प्रहृतम रुदत इति पूर्वत बाल्यातिशय, रो रहा था बच्चा, इसकी अतिशय बचपन सिद्ध हो रहा, इस कौतुक विशेष सूचित है, तेनाच अद्भुतत्व हेतु तया शक्ति विशेष अवबोध्य, तो इसकी अद्भुत शक्ति है ना, अद्भुत शक्ति है ना, इसके द्वारा आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। यथावृतम तत्त कर्म प्रकार मात्र कथनम एवं एतत एवं अग्रे अपि, इस प्रकार से ये केवल कर्म का वर्णन कर रहे हैं कि बच्चा था तो उलट दिया, लेकिन सब में ये छिपा हुआ है कि इसमें अपूर्व बल है, अपूर्व है, आश्चर्य की बात है, और इतना बल होते हुए भी फिर भी बच्चा ही है। तो कितनी लीला हुई? तीन, गोवर्धन धारण की और पुतना वध की और शकटासुर शकट उलटने की। अब चलिए कुछ बढ़े कृष्ण तो बाद में बताते। एक हायन आसीनो ह्रियमाणो बिहाय सा, और छुटा यही है ना, दैतेन यस्त्रिणावर्तम अहन कंठ ग्रहातुरम। सब में छिपा हुआ है, इतना बल है, इतना पराक्रम है, कैसे हम लोगों के बीच जन्म लिया। यह एक हायन जो एक वर्ष का था, एक वर्ष का होना कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है ना, एक तो उम्र बहुत कम और दूसरे आसीना बैठ, आसीना का है अर्थ है कि उस समय खड़ा होकर के चल नहीं सकता था। ये बच्चे कब चलना सीखते हैं? एक साल के बाद। तो कुछ महीने तो केवल सोक करके ही बिताते हैं, कुछ दिन के बाद बैठने लगते हैं। तो उसमें बैठ रहे थे कृष्ण, आसीना उपविष्ट न तु चलितुम समर्थः तादृशोपि इति अत्यंत बालस्यमेव अभिप्रेतम्। अतिशय बच्चा, चलने की शक्ति नहीं थी। तो दैतेन और दैत्य के द्वारा तृणवर्तेन विहाय स आकाश मार्गेण ह्रियमाण, तृणवर्त आया और बवंडर का रूप बना करके और आकाश में उड़ा कर ले गए इस बच्चे को, ह्रियमाण। लेकिन वहां आकाश में जाकर जहां इसको टिकने का कोई आधार नहीं था, आकाश में कोई बैठने का स्थान है नहीं है कुछ भी, स्वयं बच्चे का कोई आधार नहीं था, हर कर लिए जा रहा था, वहां जाकर के उसका कंठ पकड़ लिया। जो कंठ ग्रहण किया, उसका कंठ पकड़ा तो आतुर हो गया, व्याकुल हो गया। कंठ ग्रहण मात्र न एव आतुरम बिहवलम, इसके द्वारा भी शक्ति विशेष सूचित करें। बताओ, उस बड़े असुर का, दैत्य का गला पकड़ लेना छोटे छोटे हाथ से, तो केवल बैठना जानता है, कोई चीज पकड़ना शायद ही जानता होगा। वहां जाकर के उस दैत्य का कंठ पकड़ लिया और उसे वो व्याकुल हो गया, और कंठ पकड़ करके ही उसको गिराया पृथ्वी पर और अहन हतवान मार दिया। कैसे मारा? इतना जोर से कंठ दबाया तो इसकी शक्ति विशेष है ना, हाथ में इतना ताकत है तब तो दबाया। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस सब में अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और कृष्ण का शक्ति विशेष सूचित कर रहे हैं, लेकिन सब समय एक हायान मासस्य बालस्य ये कह रहे हैं। एक तरफ से देखते हैं तो एकदम यही सिद्ध होता है कि ये बच्चा है, दूसरे तरफ इसकी शक्तियों को देखते हैं तो लगता है कि यह कोई देवता है या भगवान है, परमेश्वर है। क्या उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो क्वचित हयंगवस्तैन्य मात्रा बद्ध उल्लूखल। अब किसी समय एक तरफ ऐश्वर्य की याद करते हैं तो एक तरफ क्वचित हयंगव के चौ अस्तन्य में नवनीत चोरी में पकड़ा गया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि ये ईश्वर है तो यह भी बात बनती नहीं। इसके घर में बहुत माखन होता है, लेकिन हयंगव का अर्थ है नवनीत माखन। कभी किसी समय जब ये माखन चोरी में पकड़ा गया मां के द्वारा, तो मां ने इसको उखल में बांध दिया। क्या सुंदर लीला का स्मरण है वास्तव। मात्रा बद्ध उलूखल है, मां के द्वारा उखल में बांध दिया गया। तो श्लोक का आधा तो इस बात को सूचित कर रहा है, न्याय हो रहा है कि न्याय प्रदर्शन प्रमाण है कि यह कोरा मनुष्य बच्चा है, एक राजा का लड़का होकर के, नंद महाराज का पुत्र होकर के, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है, लेकिन चोरी कर रहा है। कहां, अपने घर में मटका फोड़ा, मटका फोड़ करके जा करके छीके से माखन उतार कर खाने लगा, बानरों को बांटने लगा, ये करने लगा। उसी को कह रहे हैं कि हयंगो अस्तैन अस्तन स्तेन, कहते चोर को अस्तैन्य मतलब चोरी में, माखन की चोरी में मां के द्वारा पकड़ा गया है, पकड़ा गया ये न कहकर कहते बद्ध, पकड़ लिया मां ने, ये बहुत भागा, पहले डरा मां से, भाग रहा था गली में, फिर दो अंगुल रस्सी घट रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, अंत में पकड़ लिया गया, रो रहा था। इसके बाद जसोदा ने बांध दी, मां ने बांधा, मात्रा बद्ध माता जी के द्वारा बांधा गया। गच्छन अर्जुनयोर मध्य, उस समय चलने की शक्ति अभी नहीं थी, जब बंधा हुआ था तो बाहुभ्याम गच्छन, बकैया चल रहा था और उखल को घसीटते हुए। अब देखिए एक आश्चर्य, बच्चा इतनी शक्ति नहीं है फिर भी उखल को घसीट रहा था, उखल घसीट रहा था और उखल घसीटते घसीटते तव अपात, दोनों अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया। अब समझ रहे हैं ना, इसी का गिराया हुआ था। उस समय भी ये लोग नहीं माने थे, बच्चे कहे थे कि यही जब दोनों वृक्षों के बीच में प्रवेश किया तो उखल तिरछा होकर के अटक गया, तो वो लोग पूछ रहे थे अटक गया इसका मतलब कि इसी ने गिराया है, तो लोग यही कह रहे थे उखल अटका है और इसने थोड़ा जोर लगाया, बस तड़ तड़ धड़ धड़ करके वृक्ष टूट गए, गिरे, उखड़ गए, तो लोग नहीं माने थे। आज ये कह रहे हैं कि इसी ने गिराया था, अब विश्वास हो रहा है। लेकिन इस तरह से चोरी में पकड़ा जाना और उखल में बांध दिए जाना, वही मां बांधी थी, तो दूसरा नहीं बांधा था, इसका मतलब सचमुच में यह माखन का लोभी है और चोरी किया था। कोई दूसरा बांधा तो सोचा जाता कि भाई ऐसे दोष दृष्टि करके कोई बांध दिया। तो ये ऐसा कैसी है, एक तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल अबोध बालक है, चोरी कर रहा है, बांधा गया और बंधे ही बकैया चल रहा था, उखल कमर से खींच रहा था और उखल बीच में अटक गया, ये बाहुभ्यम गच्छन, हाथ से चल रहा था और चलते चलते दोनों वृक्ष को गिरा दिया। ये तो बहुत प्रसिद्ध लीला है उखल बंधन की। बाह से चल रहा था, इसका मतलब तदग्राभ्याम लत्राभ्याम, या गच्छन बाह से गिरा दिया, नहीं बाह से चल रहा था, यही कहा जाए, बाह के अग्रभाग से चल रहा था। बच्चे चलते हैं ना बकैया, चलते चलते दोनों वृक्षों को गिरा दिया, इसका मतलब ही रेंग रहा था, रेंगते रेंगते, रिंगड़ कहते हैं संस्कृत में, एक तो रेंग रहा था और भी बांह से रेंग रहा था और वृक्षों को गिरा दिया। तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों, माधुर्य प्रधान है लेकिन ऐश्वर्य बीच बीच में आकर के उनको संदेह में डाल रहा है कि क्या यह ईश्वर है। अब और थोड़ा बड़े हुए, बने संचारयन वत्सान सरामो बाल कैर्वृत हंतु कामम बकम दुर्भ्या मुखतोरिम पाटे। ये बालकों से घिरा हुआ और सराम बलराम के साथ अयम कृष्ण बने वत्सान चारण बछड़ा चरा रहा था। पहले बछड़ा चरा रहे थे भगवान कृष्ण और बलराम, गाय नहीं, तो बच्चों को चरा रहे थे, बहुत छोटे छोटे थे, 5-6 वर्ष के बछड़ा चरा रहे थे। तो चरा रहा था, गोपों से घिरा हुआ था, तो इसको मारने की कामना से इस शत्रु आया बकासुर और उसको मुख के तरफ से चोंच पकड़कर फाड़ दिया। चोंच पकड़ करके फाड़ दिया इतना भयानक राक्षस, और जो पुतना का भाई था, पुतना का बड़ा भाई था, छोटा भाई था अघासुर। सब बकी बकानुज, अघासुर को कहा गया बकी और बक का अनुज था अघासुर, तीनों सहोदर भाई बहन थे। पुतना बहन थी, पता नहीं किस काम से तर भयानक हुए थे। पुतना मारी गई तो उसका बदला लेने के लिए बकासुर आया, बकासुर भी मारा गया तो बहन और भाई का बदला लेने के लिए अघासुर आया था। अभी बछड़ा चराते समय तो मारने के लिए आया, और अरिम, अरिम का से शत्रु, महाशत्रु था, बहुत सोच करके आ रहा था पुतना का बदला लेने के लिए। एक दिन की बात है, कृष्ण बछड़ा चरा रहे थे तो बछड़ों को पानी पिलाने के लिए एक सरोवर पर गए। ये जो जमुना, हाँ सरोवर, जमुना जी के किनारे जाना इन लोगों को मना था। सरोवर पर गए तो बछड़ों को पानी पिला लिए, और पिलाने के बाद स्वयं पानी पिए। बच्चे थे लेकिन देखिए गौओं का कितना आदर करते थे बछड़ों का। बछड़ों को पहले पानी पिला लिए बाद में पिए, क्योंकि गाय इस पूज्य है, देवता है, उसको खिलाकर पिला करके तब खाना चाहिए। तो भगवान गोप बालकों के साथ थे, पहले बछड़ों को पानी पिला लिए और इसके बाद स्वयं पिए। पानी पी ही रहे थे कृष्ण, तो सखा लोग भी बैठे थे अभी तट पर ही सरोवर के, तो देखे कि वहां पर एक संगमरमर के पहाड़ के शिखर की तरह, बहुत बड़े पत्थर की तरह एक कोई जीव बैठा है, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल श्वेतांबर। बगुले वैसे उजले रहते हैं, बगुला के आकार में था। तो भगवान ऐसे देख रहे थे, देख रहे थे, तब तक तो एकाएक आया विशाल रूप बना करके, चोंच खोल करके, आते ही आकर के कृष्ण को खा गया। बच्चों ने हल्ला किया, खाए रो, खाए गए रे, खाए गए रे, खाए गए रे। वहीं पर जहां पर खैरा गांव है, बरसाने और छटिकरा के बीच में, नहीं छाता के बीच में, तो नाम आज भी खैरा है। तो खा गया रे, खा गया, खा गया, तो खा गया। लेकिन जब ही खाया कृष्ण को, तो कृष्ण उसके कंठ में पहुंच करके और आग की तरह जलाने लगे उसको, उसका कंठ जलने लगा, चोंच के भीतर कंठ जलने लगा बिल्कुल। तो वो समझा कि मैं अंगार ही खा रहा हूं, तो तुरंत आया करके उगल दिया कृष्ण को आप लोग कभी कोई बहुत गर्म चीज खाए होंगे तो अनुभव होगा। तो भगवान तो कहते हैं कि जदादित्य गतम तेजो जगत भाषे ते खिलम जद चंद्रमसी जद चागनऊ तत् तेजो विद्धि मामक। अग्नि में जो आंच है वो मैं हूं। तो भगवान तो अपना उष्णत्व तो प्रकट किए अग्नि का धर्म। इतना जलने लगा कर्ण कि तुरंत उगल दिया, वो चबाया नहीं कृष्ण को, उगल दिया। उगल दिया उसके बाद तो कुछ भय लगने लगा, लेकिन फिर चोंच से मारने की सोचा कि उसको निगलेंगे नहीं, ऊपर से मारेंगे, खोभेंगे अपने चोंच से। तो आक्रमण किया, चोंच आक्रमण किया कृष्ण पर। जब ही मारने आ रहा था तब तक भगवान उसके दोनों चोंच को दोनों हाथ से पकड़ लिए और चीर कर फेंक दिए। उसने बड़े जीव को, बड़े बगुला को चीर दिए। तो उसकी याद कर रहे हैं, कहां इतना बलवान बकासुर और उसको दोनों हाथ से चीर दिया है। कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र परसु या फावड़ा या लगाया होता, चीरा होता, हाथ से पकड़कर चीर दिया। वो भी शत्रु को, जो बहुत प्लान करके आया था शत्रुता लेने के लिए, मारने के लिए, उसको फाड़ अपाटयक विदारितवान एकदम दो टुकड़ा कर दिया, फेंक दिए मर। एक के बाद दूसरी लीला की याद करते जा रहे हैं। वत्सपेशु वत्सरूपेण प्रविशंतम जिघांसया हत्वा न्यपात्या तेना कपित्थानी च लीलायन। अभी बछड़ा चरा रहा था कृष्ण, ये लड़का, तभी की बात है। वत्सों का पालन करना, बछड़ा चराने वाले बच्चों के बीच में एक असुर आया जो वत्स के रूप में आया, बछड़ा के रूप में आया है, वत्सासुर था और जिघांसया मारने के लिए आया। जिघांसया वत्स रूपेण वत्स पेशु प्रविशंतम। और उसको भगवान कृष्ण ने दिखाया बलराम जी को, बलराम जी से बात किए, कह के ये देखिए ये जो बछड़ा है किसका है, पहचानते हैं? तो श्री बलराम जी भी लीला के कहे नहीं, वो कहे बछड़ा एकदम अनजान लगता है, बछड़ा के रूप में आया था, वत्स के रूप में, इसलिए वत्सासुर कहते हैं उसको, कृष्ण को मारने के लिए। हंतु काम जिघान से है। तो भगवान बता रहे थे ऐसे बलराम जी से, ये बछड़ा एकदम अनजान लग रहा है, किसका है, कौन गांव से आया है, बरसाने से है कि नंदगांव से या कहां से? तो श्री बलराम जी भी समझ गए, कहा हाँ ठीक है, ये अनजान है। तो अभी वो मारना चाहता था कृष्ण को, दुलत्ती मारना चाहता था, चाहे जो भी किसी तरह मारना चाहता है, तब तक तो, और जब निकट आया तो अपना विकराल रूप प्रकट कर चुका था। मारना चाहता था तो तब तक कृष्ण बहुत फूर्ति से उसके पूंछ और दोनों टांग एक हाथ से पकड़ लिए, एक हाथ से पकड़ पूंछ के साथ और घुमाना चालू किया। यही ये लोग याद करें कि इसकी शक्ति देखो इस लड़के की। वह सासुर को उसकी दोनों टांग पकड़ लिया, पूंछ पकड़ लिया और घुमाया और कपित वृक्ष पर, कैता पर फेंका। कपित कहते, कई कपित थे उसके साथ, कपित के वृक्षों को भी लीलया न्यपात्यत, उसको मारा और मरे हुए देह को फेंका कपित वृक्ष पर, तो अनेक कपित के वृक्ष गिर गए। खेल खेल में कर दिया, अनायास ही कर दिया। इस बच्चे के विषय में हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक एक लीला को बहुत देर देर तक याद करते, ऐसे आया, ऐसे मारना चाहता था, कृष्ण ऐसे मार दिए। अगर कृष्ण केवल पैर पकड़े होते और एक पैर, तो हो सकता था दूसरे पैर से मारता चाहे पूंछ से मारता है, इसलिए पूंछ और पैर दोनों पकड़ लिए। असुर था ना, राक्षस था, तो उसको मार दी। कपिथानी च अपाते तेना वत्सासुर देहे न मृत देहे न हत्वा पश्चात पाद द्वय ग्रहणे न भ्रमणा। पहले तो उसको मारे घुमा करके, और दोनों पैर और पूछ पकड़ करके घुमाए और घुमा करके कपित वृक्ष पर मारे। एक कपित वृक्ष पर मारे तो वो कपित वृक्ष दूसरे वृक्ष को गिराया, दूसरे ने तीसरे को गिराया, कई वृक्ष गिर गए। अनेना अपि शक्ति विशेष एवं सूचित एवं अग्रे अपि उहियम, इसके द्वारा भी शक्ति विशेष सूचित हो रही है। नौ श्लोकों में नौ लीला का वर्णन किए हैं, कितना श्लोक हुआ? नहीं, नौ श्लोकों में अभी नहीं हुआ, वो लीला नौ श्लोकों में है। वो हत्वा रासभ दैतेयम् तद्बन्धुश्च बलान्वितः चक्रे तालबनम् क्षेमम् परिपक्व फलान्वितम्। बलराम के साथ युक्त होकर यह श्री कृष्ण रासभ दैतेभ्यम्, गधे के रूप में आए हुए धेनुकासुर को और उसके बंधुओं को मारा, और पके हुए फलों से युक्त ताल वन को निर्भय कर दिया, सब सबके भोग के योग्य बना दिया। सभी लोग जा सकते हैं, गौए जा सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं, ऐसा बना दिया ताल वन। जिस ताल वन को रिजर्व किया था रासव दैत धेनुकासुर, तो बल के साथ, बलराम के साथ इसने मारा। इसका अर्थ धेनु के वध में भी इसी की प्रधानता रही। ये सभी जानते हैं कि धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया, लेकिन ब्रजवासी कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, उसके वध में भी इसी की प्रधानता थी। इसने पहाड़ धारण किया, इस बात से सब अब कह रहे कि धेनु का भी वध यही किया, बलराम साथ में था। जबकि बलराम जी मारे थे कृष्ण साथ में थे, लेकिन कृष्ण के ऐश्वर्य से इतना चित प्रभावित है, कहते हैं कृष्ण ने मारा, बलराम से युक्त होकर के धेनु का वध किया और उसके बंधुओं का भी वध किया। अनेक राक्षस थे, वे गधे के रूप में आ रहे थे, तो उन सबको मारा और धेनुकासुर का वध किया, और वध करके परिपक्व फल फलान्वितम तालबलम क्षेमम चक्र, परिपक्व फलों से भरे हुए तालवन को निर्भयम सर्वोपभोग्यम चक्रे, सबके लिए छूट हो गई, ताल फल खाओ, गौए घास चरे और सब, क्षेमम चक्रे निर्भय कर दो। ये सब गाय चराते समय किए, बछड़ा पहले चराए थे, उसके बाद गाय चराने लगे, तो गोचारण के समय ही धेनुकासुर का वध हुआ था। प्रलंबम घातयित्वग्रम बलेन बलशालिना अमोचयद ब्रजपशुन गोपांश्चारण्य वहनितः। वास्तव में धेनुकासुर का वध और प्रलंब का वध बलराम जी ने किया था, तो प्रलंब के वध के विषय में लोग कह रहे हैं इसी ने मरवाया प्रलंब को बलराम के द्वारा। प्रलंबम घातयित्वा उग्रम, प्रलंबासुर बहुत उग्र था, तो बलेन बलशाली ना, बलशाली बलराम के द्वारा इसने मरवाया, और अरण्य वहनिता जंगल की आग से, वन में जो अग्नि लगी थी उस दवानल से गोपों को और ब्रज के पशुओं को इसने मुक्त किया, बचाया। ये सब लीला की याद है। धनुकासुर का वध, प्रलम्बासुर का वध। तो ये प्रलम्बासुर गोप के रूप में आया था, चरवाहा बन करके और दोस्ती किया कि हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। और खेल क्या हो रहा था? खेल हो रहा था, दो दल बटा हुआ था। एक दल में बलराम जी थे और दूसरे में कृष्ण। खेल क्या हो रहा था? घोड़ा और सवारी बनने का खेल चल रहा था। जो दल हारेगा वो घोड़ा बनेगा और कुछ दूर ले जाएगा, उस पर चढ़ेगा दूसरा आदमी। जो जीतेगा वो चढ़ेगा और जो हारेगा उसको कुछ दूर ले जाएगा। वो लोग डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य निश्चित किए थे कि यहां तक ढोना है, यहां तक ढोना है। तो वो प्रलम्बासुर सोचा कृष्ण बहुत बलवान है, तो इसको ढोना कठिन होगा। ये तृणावर्त को मारा, इसको मारा, इसको मारा, इसको नहीं ढो पाऊंगा। वो चाहता था कि मैं हार जाऊं और जो हम पर चढ़े उसको ले जाकर के मार डालूं। तो पहले तो कृष्ण को मारने को सोचा, लेकिन सोचा कि नहीं नहीं, तृणावर्त ले गया था तो उसको मार डाला आकाश में ही। ये बहुत खतरनाक लड़का है, बलराम को ले चलेंगे। तो इसलिए वो कृष्ण के पक्ष में हो गया, कृष्ण के पक्ष से खेल रहा था। तो जो हारते थे वो ढोते थे, सवार बनता था। तो कृष्ण के पक्ष से खेल रहा था तो हारने में तो कोई परेशानी नहीं, जब चाहे तब हार जाए। तो हार गया और श्री बलराम जी जीते। तो तैयार हो गया, ठीक है बलराम चढ़े और ले चलेंगे जहां जहां ले जाना था, थोड़ा दूर ही ले जाना था। तो जो हार गया और बलराम जी चढ़े तो कहा चढ़ो 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 चढ़ो, बलराम जी चढ़े। चढ़े तो ले गया, बहुत फुर्ती से दौड़ करके उस स्थान पर ले गया। लेकिन वो देखना चाहता था कृष्ण की नजर न पड़े, बलराम को भी पता न चले कि यही उतारना था, आगे क्यों ले जा रहा है। लेकिन वो चला, पहले तो तेजी से चला और जहां उतारना था वहां जाते जाते हवाई जहाज की तरह आकाश में उड़ गया, जमीन छोड़ दिया। बलराम जी का एक आकाश में आए, उनको झाए बालने लगा, नीचे देखे तो एकाएक बाल लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला, तो थोड़ा कांपे। लेकिन इसके बाद तुरंत ही, वो तो साक्षात भगवान है, चलते चलते ये बहुत भारी लगने लगे, अपना वजन बढ़ाए। सारा ब्रह्मांड तो उनके भीतर है, वो अपना वजन बढ़ाए एकाएक। तो जो वजन बढ़ाए तो चलना उसकी गति शिथिल हो गई, शिथिल हो गई। और शिथिल हो गया, ऐसा भ्रम पैदा किया भगवान बलराम ने को लेकर के उसी स्थान पर आया जहां से उड़ा था। एयरपोर्ट पर ही भंडीर वन के पास की लीला है। और आने के बाद उन्होंने उसको मार डाला, वत्सासुर प्रलम्बासुर। और उसी दिन गोप और पशु दवाग्नि में फंस गए थे। दवाग्नि में तो जंगल की आग में, चारों तरफ से कहीं निकलने का रास्ता नहीं था। गौएं चिल्ला रही थी, गोप रो रहे थे सब। तो भगवान कृष्ण उस दिन आग को पी गए, कई किलोमीटर में लगी हुई आग को वे पी गए। मुंह खोल करके कहे हम रक्षा करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और कहे कि आंख बंद कीजिए, लोग आंख बंद किए और भगवान आग को पी गए। इसलिए आंख बंद करवाए कि हमारे मुख में लोग आग देखेंगे तो और घबरा जाएंगे। तो कहे कि आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कर लिए, भगवान आग पी गए। इसके बाद कहे आंख खोलिए, तो कोई आग नहीं थी। और वो लोग वहां पहुंच गए जहां भंडीर वन में खेल चल रहा था, वहां आराम से वहां चले गए। तो ये लीला, ये लड़का लीला नहीं, ये काम गए, ये आग पी गया। अरण्य बहनिता ब्रज पशु गोपाल च अमुच रक्षा किया। इसमें भाई अपार विशेषता है, अपार बल है। हम तो रात दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसी सब हुआ, कैसे हुआ। आग पी गया और पेट में या गला में या ओठ में दमसूड़ा में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इतना धधकती हुई आग को पी गया और फिर भी कुछ बच्चे कृष्ण का मुख खुलवा करके देख रहे थे उस मुख में। कोई फोड़ा पड़ा होगा, जीभ जली होगी, ये हुआ, कुछ नहीं। कैसी सब हो रहा है। नंद बाबा से कह रहे हैं अब काली दमन आसी विस्तमा इंद्रम दमित्वा विमदम हृदात प्रसह्योद्वास्य जमुनाम चक्रेशौ निर्विशोदकाम। असौ श्री कृष्ण जो हृदय में ही छाए हुए हैं तो वन में गाय चराने गए हैं, लेकिन कहने असौ माने यह बच्चा, उन्हीं की याद करके वो हृदय को आक्रांत किए हुए हैं, हृदय में हमेशा उदित हैं। तो असौ श्री कृष्ण, यह श्री कृष्ण आसी विस्तम अहिंद्रम, आसी विस्तमो का अर्थ होता है अति क्रूर विष जिसका है, जिसका विष महाभयानक था, असौ अहिंद्र और वो भी सर्पराज कालिय, तम कालियम इत्यर्थ विमदम, कालिय का मद दूर कर दिया, उसके कर दिया उसके सिर पर नाच करके, फण पर नाच करके, और दमित्वा उसका दमन किया, और प्रसह्य बलात् हृदात् जमुना जी के हृदय से कालिय दह से उद्वास्य निकाल दिया, उसको भगा दिया कहीं। जमुना निर्विशोदकाम चक्र, और जमुना को विष शून्य सलील कर दिया, जिसके जल में अब कोई विष नहीं था। तो सांप को तो निकाला ही, जमुना को भी बिल्कुल निर्मल कर दिया और उसमें कोई विष नहीं। ये भाई एक से एक आश्चर्य है। महाभयानक कालीय सर्प जिसके 1000 फण थे और प्रधान 101 फण थे, उस कालीय का मद इसने दूर कर दिया, सो घमंड चूर चूर कर दिया। कालिये कृष्ण को डसना चाहता था, जो जो फण उठाता था उस फण पर भगवान नृत्य करते थे, पैर देते। तो श्रीमद् भागवत में कथा इस प्रकार से है कि जमुना जी के तट पर कालिये हरद के तट पर गौएं गई, गोप सब गए, सखागण, वो नहीं जानते थे कि ये जमुना जी के पानी में भयानक विष है कालिये सर्प का, हलाहल विष। तो वो लोग पानी पिए, प्यास लगी थी, गर्मी का महीना था, प्यास लगी थी, जाकर के पानी पिए, गौएं पानी पिए, और पानी पीते ही सब छटपटा करके मरने लगे, मर गई, गिर गिर करके मर गई, और गोप सखा भी सब थे, वे भी मर गए सब। भगवान देखे हैं उस दृश्य को तो बिल्कुल रोने जैसा चेहरा हो गया, रोने लगे, हाय हमारा धन खत्म हो गया, हमारे सखा खत्म हो गए, सोचने लगे, और वे रोए रोए, और रोने से उनके आंखों से अश्रु गिरे, गऊओं पर पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, बच्चों को पकड़ कर रो रहे थे, गोपों को, तो उनके आंखों से जो आंसू निकले वे महा अमृत थे, वही सुधा बेष्टि, और उसे सभी जी गए। अर्थात भगवान अपने आंखों से देख करके गौओं को और गोपों को जीवित कर दिए, और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जमुना को शुद्ध करना चाहिए। तब वे फेंटा कसे, अपना परिकर बांधे कमर में, और कदम वृक्ष के बिल्कुल ऊपर चढ़े, ऊपर बहुत बड़ा कदम वृक्ष था, तो उससे फिर जमुना हृद में कूदे, बीच में वहां से छलांग मारे, छलांग मारे तो बहुत जोर की आवाज हुई, काली ने सोचा कि ये कौन हमारे घर में आ गया, उपद्रव कर रहा है। और भगवान कूद करके इसके बाद गजराज जैसे जल में विहार करता है ऐसे विहार करने लगे, उसमें तैरना, थपथपाना, हाथ बजाना, ये सब करना। तो वो आया कृष्ण के पास, आवाज सुन करके वो आया। आया तो देखा कि एक सांवला लड़का इतना निर्भय टहल रहा है, नीचे से देखता हुआ आया। तो पहले टच नहीं हो रहा था, आया कुछ देर बाद आकर के पैतरा बदलने लगा। इसके बाद कृष्ण को पकड़ लिया अपनी भुजाओं में और डसा, लेकिन डसने का कोई असर नहीं भगवान पर हुआ। मर्म स्थान में, कलेजा में, आंख में, इधर उधर डस रहा था। इस दृश्य को देख करके ब्रजवासी तो बड़े व्याकुल हो गए थे कि कृष्ण को सांप डस दिया। कृष्ण निश्चेष्ट हो गए थे। इसके बाद फिर श्री कृष्ण अपना शरीर बढ़ाए तो उसका शरीर टूटने लगा, तो छोड़ दिया उनको और छोड़ करके दूर होकर के फुफकारने लगा। जब दूर होकर के फुफकारने लगा तो भगवान भी उससे लड़ने की पैंतरा बदलने लगे, खेल रहे थे जल में ही। अगर काली इधर डसना चाहता था तो कृष्ण इधर हो जाते थे, इधर डसना चाहता था तो इधर हो जाते थे। घुमाते घुमाते उसकी शक्ति पस्त हो गई। इसके बाद भगवान एक हाथ से उसके एक फण को ऐसे मारे, नीचा किए और दबाए और उछल करके चढ़ गए फण पर। फण पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। जिस फण को ऊंचा करता था डसने के लिए उसी फण पर थप से अपना चरण रखते थे। लहू लुहान हो गया उसका फण और उसी पर वे नाचना चालू किए। जब नाचने की उनकी इच्छा हुई तो स्वर्ग से विद्याधर लोग बाजा लेकर के चले आए, देवता लोग बाजा बजाने लगे, कुछ गाने लगे और भगवान भी बांसुरी ले ही गए थे, वो बांसुरी बजा बजा करके नाचने लगे, कालिये के फण पर नृत्य कर रहे। इसको सब लोगों ने देखा था और अंत में कालिये एकदम पस्त हो गया। तब उसकी स्त्रियां रोने लगी कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए। उसके मुख से आंख से खून चू रहा था, मुख से नाक से। अब एकदम नम्र हो गया, शिथिल हो गया। तब भगवान ने उसको आज्ञा दिया कि तुम यहां मत रहो, वृंदावन में तुम मत रहो, तुम जाओ रमणक द्वीप। लोग कहते हैं कि रमणक द्वीप को फीजी है तो तुम फीजी में चले जाओ, जहां भी हो तुम रमणक द्वीप में जाओ, एक गौएं गोप सब इस जल का उपयोग करेंगे। तो कहा कि मैं जाऊंगा वहां तो गरुड़ जी हमको मारेंगे, मैं उनके भय से यहां आया था। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे चरणों की छाप तुम पर लग गई, तुम अब वैष्णव हो गए, अब गरुड़ नहीं खाएंगे तुमको। तो चला गया परिवार के साथ। उसी को गोप लोग याद कर रहे हैं, महाभयानक विष वाले कालिये का दमन किया इस लड़के ने और उसको विमद कर दिया, विषहीन कर दिया और प्रसह्य बलात् निकाल दिया जमुना जी से और जमुना के पानी को विष शून्य कर दिया। इसकी अद्भुत शक्ति है। इतना कह करके फिर कहते हैं, दुस्तेजश्चानुरागोस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौ कृशां नन्दते तनेष्मासु तस्य तस्य अप्योत्पत्तिकः कथम्। नंद महाराज, आपके पुत्र में हम लोगों का अनुराग दुस्तेज है, दिन पर दिन अनुराग बढ़ता जा रहा है और हम लोगों के प्रति इसका जो प्रेम है वो भी औत्पत्तिक है, बिल्कुल स्वाभाविक, जन्म से ही है, हम लोगों से इतना ही प्रेम करता है। इतना प्रेम, यही प्रेम तो बाध्य कर दिया इसको, हम लोगों से प्रेम है तभी तो हम लोगों को बचाने के लिए ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये क्या होता है। हमारा प्रेम इसमें बढ़ता जा रहा है और इसका प्रेम हमें बढ़ता जा रहा है। एवं अन्योन्य मुक्त्वा अधुना ईश्वर एव अयमिति चेत और सब विचार करके बात कह करके सोचते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है फिर भी तथापि ऐश्वर्येण भक्ति रे व वर्धते। हम ईश्वर भी इसको मानते हैं तो इसमें हमारा प्रेम ही बढ़ रहा है। स्वाभाविक निरंतर अनुरागश्च भय गौरवादि संकोचेन, इसमें हमारा प्रेम बढ़ रहा है तो इससे भय नहीं लगता है। ईश्वर जान रहे हैं, ईश्वर बुद्धि होती है, फिर भी इसे भय नहीं होता है और गौरव का भाव भी नहीं होता है कि हमसे बड़ा है। तो ईश्वर क्या मान रहे हैं, कोई भय नहीं, संकोच नहीं, अदब नहीं। हम सब कुछ जानते हैं कि एक तरफ सोचते हैं कि ईश्वर है, ये है, लेकिन इससे कोई भय नहीं होता है, कोई हमसे बड़ा है ये भी भाव नहीं होता है, बल्कि हमारा इसके प्रति स्नेह ही बढ़ रहा है और इसका हम लोगों के प्रति निरंतर स्नेह बढ़ रहा है। ये भी आश्चर्य है, अगर ईश्वर है तो हम लोगों से कितना इतना क्यों घुल मिल गया है। आपको पिता कहता है, उपनंद महाराज को पिता कहता है, उनको पिता कहता है, उसको पिता कहता है, किसी को मामा कह रहा है, मतलब यशोदा जी का भाई, देवकी का भाई तो खतरनाक था। तो यशोदा जी के भाई को किसी को मामा कहता है, किसी को चाचा कहता है, किसी को भैया कहता है। इतना मिला हुआ, इतना प्रेम इसका हम लोगों के प्रति है। गोद में आ जाता है, गोद में हम इसको पुचकारते हैं तो बहुत प्रफुल्लित होता है। ये देख करके हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, हमारे स्नेह का आकांक्षी है, हमारी दी हुई वस्तु को बड़े प्रेम से खाता है। कोई गोपी दही मचती है तो जाकर के हाथ पसारता है, थोड़ा माखन दे दो। ईश्वर कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब चीज हम देखते हैं, इसको मारा तो मन में हो जाता है कि यह ईश्वर है। ये जो भी हो इसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है और इसका प्रेम हम लोगों के प्रति बढ़ता जा रहा है। हे नंद, अस्मिन ते तव तनय न तु ईश्वरे। हे नंद महाराज, आपके इस तनय में, पुत्र में, कृष्ण में, न अस्माकम सर्वेशम ब्रजौ कसाम अनुराग प्रति क्षणम नव नवाय माना वर्तमान प्रीति। ये अर्थ, हमारी प्रीति बढ़ती जा रही है इसमें और ये हमारे लिए छोड़ना कठिन है। दुस्त्यज, हम नहीं छोड़ पाएंगे, छोड़ने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कथम, क्यों नहीं प्रीति छूटेगी? तस्य अपि एवं विध अति मानुष चेष्टितस्य च तस्य अपि अस्मासु अयोग्येषु अपि उत्पत्ति कह जन्मदिन आरभ्य दृष्ट स्वाभाविक अनुराग एव। हम इससे प्रेम नहीं छोड़ पाएंगे, कभी कल्पना भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह जब से जन्म लिया है तब से हम लोगों के प्रति, हम अयोग्यों के प्रति भी, हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन हम लोगों से इसका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, अनुराग बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार परस्पर का प्रेम है, हम चाहते भी, हमको बहुत अच्छा लगता है कि इसी में प्रेम बढ़े और ये हम लोगों से प्रेम करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दुस्त्यज अनुराग कथम, अब उस वाक्य को लाए पिछल, किम सर्वेशम आत्मा एवं स्यादिति भाव। हमने सुना है नंद महाराज कि जो परम आत्मा है उसी में सबका प्रेम होता है। तो आपका पुत्र है तव तनय, ये हमारा पुत्र नहीं है लेकिन हमारा सारा प्रेम इसी में है, तो क्या यह ईश्वर है, परमात्मा है? आत्मा में ही सबका प्रेम देखा जाता है, शास्त्र कहता है। तो क्या यही परमात्मा है? दुस्तजश्च इति ऐश्वर्य साक्षात अनुभूते अपि। अब दुस्तज का अर्थ कर रहे हैं श्री सनातन स्वामी, हम इसके ऐश्वर्य को, ईश्वरताई को साक्षात देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर फिर भी इसमें प्रेम करना हम छोड़ नहीं सकते। त्यक्तुम अशक्य जत औत्पत्ति कह, जैसे अग्नि में अग्नादेह अग्न्यादेह औष्ण औष्णयादिवत, जैसे अग्नि में सहज उष्णता होती है, गर्मी होती है, उसी तरह से इसमें हमारा स्वाभाविक प्रेम है और इसका हम लोगों में स्वाभाविक प्रेम है। कोई अग्नि में उष्णता कोई कहीं से लाता नहीं, स्वाभाविक है। इति आपद रक्षणादिना उपाधिना शक्य मानो अनुरागो निरस्त। तो श्रीपाद सनातन को समझ कहते हैं कृष्ण में इसलिए अनुराग नहीं है, ये कह रहे गोप कि आपद में विपत्ति में संकट में रक्षा किया है इसलिए प्रेम नहीं, ऐसा नहीं, स्वाभाविक प्रेम है। जैसे मां का अपने बच्चे में स्वाभाविक प्रेम रहता है, इसलिए नहीं कि वो मां को भोजन करा रहा है, जन्म लेते ही भोजन करा रहा है, विपत्ति से बचा रहा है, नहीं, स्वाभाविक जैसे प्रेम। तो इस कोई उपाधि से हमारा प्रेम नहीं, स्वाभाविक है। और सर्वे साम न, सर्वे साम ब्रजवासी नाम, बालादि वृद्ध पर्यंता नाम, चाहे बच्चा हो ब्रजवासी, चाहे वृद्ध हो या युवक हो, स्त्री पुरुष कोई भी है, सबका प्रेम इसमें बढ़ता जा रहा है और इसका प्रेम हम लोगों से बढ़ रहा है। हम लोगों के लिए सात दिन सात रात पहाड़ उठा लिया है। तत्र असंदेहार्थम स्वानुभवम अभिव्यंजयंती अहो भवतु वा सर्वथा आकृति प्रकृति सुंदरे सर्वचित्ता कर सके अनन्य गतिना अस्माकं चानुरागो दुस्त्यज। ये तो माना जा सकता है नंद महाराज, कृष्ण में इसमें हम लोगों का अनुराग हो, प्रेम हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक अजीब बात है कि यह हम लोगों से प्रेम कर रहा है, यह आकृति में और प्रकृति में, यह शरीर के आकृति में और स्वभाव में बहुत सुंदर है। आकृति और प्रकृति दोनों तरह से सुंदर है, सर्वचित्ताकर्षक है, अनन्य गति ना, इसमें प्रेम किसी का भी होना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों में इसका अनुराग होना एक अजीब आश्चर्य की बात है, हम लोगों में इसका अनुराग बढ़ता जा रहा है। तस्य अपि अस्मासु निकृष्टेषु असेवकेषु, हमने इसकी कभी सेवा भी नहीं किया, अपराधादौ अपि, हमसे कोई अपराध भी हो जाता है फिर भी हम लोगों से प्रेम कर रहा है। इसको उखल में बांधा गया, क्या क्या कहा गया, रोज पूरे ब्रज में इसको चोर चोर कहा जाता है, फिर भी इसी हम लोगों से प्रेम कर रहा है। इसका प्रेम दुस्त्यज है हम लोगों के प्रति, और हमारा प्रेम इसके प्रति दुस्त्यज। अतो नायम अवतारी श्री नारायण न च तद अवतार, यह कोई अवतार नहीं है, न अवतारी है, नारायण है, कश्चिदपि भवत कोई नहीं, किंतु मधुर स्वर्ग विशेष संबलित विचित्र बाल्य विशेषेण अनेन सर्वतो विलक्षणो दुर्वितर्क महात्म्यारणव कोपी पुरुषोत्तमो भविष्यति इति भाव। यह नारायण नहीं है, नारायण का कोई अवतार नहीं है, बल्कि मधुर ऐश्वर्य विशेष से संबलित विचित्र बाल्य विशेषेण अनेन सर्वतो विलक्षणे विलक्षणो दुर्वितर्क महात्म्यारणव कोपी पुरुषोत्तमो भविष्यति इति भाव। नंद बाबा, ये लड़का भगवान नहीं है, हम निर्णय पर आए हैं, ये स्वयं अवतारी नहीं है, मतलब नारायण भगवान नहीं है जो अवतार लेते हैं, न तो कोई अवतार है, यह तो कोई पुरुषोत्तम है, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति, और ऐश्वर्य और माधुर्य माधुर्य से और ऐश्वर्य से संबलित विचित्र बाल्य अवस्था में सबसे विलक्षण दुर्वितर्क महात्म्य का अर्ण समुद्र है, यह तो कोई पुरुषोत्तम है, मनुष्यों में कोई उत्तम पुरुष है यह। सब तरह से हम इसी निर्णय पर आए कि यह सबसे श्रेष्ठ पुरुष है पुरुषोत्तम, यही हम निर्णय पर आए। भगवान होता तो कई बातें नहीं होती, और सामान्य मनुष्य होता तब भी ये बात नहीं होती, तो कोई पुरुषोत्तम है, वास्तव में रियल में पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम का अर्थ वो जस्मा क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम नहीं समझ रहे हैं। पुरुषोत्तम माने अद्भुत अनंत गुण से भरा हुआ, दुर्वितर्क महात्म्यारणव, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ये नारायण नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ये तो अद्भुत बात है। कोई पुरुषोत्तम विलक्षण, सबसे विलक्षण पुरुषोत्तम है और अनंत गुणों का समुद्र है। ये इतना सुंदर बोलता है, वो बोलते हमारी गोद में आता है, कहता हमको भूख लगी है, और गोद में आकर कहा कि हमारी बाह बहुत दुख रही है, 7 दिन उठाए रहा। तो भगवान कैसे हो सकता है? अद्भुत लीला है भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण जसोदा जी से एक बात कहते हैं, वो हम इसमें से कह रहे हैं, गाया जाएगा, कोई भक्त जो गाना जानते हैं वो गाएं। वो भक्तवत्सल गाए, परमानंद दास जी का पद है, मैया मेरी रही बांह पिराई, पृष्ठ 50 पर है। माँ से कह रहे हैं कि हमारी बांह बहुत दुख रही है, बहुत दिन उठाए रहा ना। माइक और मार्दंगिक, इधर आइए, सामने आइए, उनके साथ हारमोनियम वाले के साथ। ऐसे बहुत जैसे समाज में गाते हैं ना, समाज में पद गाते हैं, वैसे गाना। ज्यादा जो गाया जा रहा है उस बात पर ध्यान न दे करके आप राग लगे करने, इसलिए बिगड़ रहा है। जब नहीं मालूम है तो कहना चाहिए कि मैं नहीं गा पाऊंगा इसको। साधारण केवल मैं अर्थ करूं तब भी मजा आएगा। जैसे गाते हैं वृंदावन में समाज में निम्बार्क संप्रदाय के लोग, वैसे गाना चाहिए। दिवस दिवस उसका सीधा अर्थ तो सीधा है कि माँ मेरी रही बांह पिराई, मेरी बांह पीला दे रही, दुख रही है, दुख रही है। क्योंकि 7 दिवस, यह ध्वस है, उसका मतलब 7 दिवस, सात द्योस गिरी कर धरी राखो मेरे दुखत पाए। बाह तो पीड़ा रही है, सात दिन पर्वत उठाने से पैर भी दुख रहा है। सात द्योस गिरी कर धरी राखो मेरे दुखत पाए, मैया मेरी रही बाह पीराए। रही बाह पीराए बड़े गोप उपनंद नंद जु, बड़े गोप उपनंद नंद जु करी हैं सबै सहाय। परमानंद पग चापी जसोदा मुख की लेती बलाय। तो माँ जसोदा पैर दबा रही है कृष्ण का कि दुख गया है। बड़े गोप उपनंद नंद जो करी हैं सबै सहाय। इसका क्या था? इसका मतलब यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कि पिताजी और उपनंद महाराज बड़े पिताजी और सब सहायता किए हमारी, तब मैं उठा लिया। करो करो होना चाहिए, वो सब सहायता हमारी किए तब मैं उठा लिया, लेकिन फिर भी कुछ वजन पड़ गया तो बाह दुख रही, बाह दुख रही है, पैर दुख रहा। यह है माधुर्य भगवान का। इस पर कैसे उनको लोग मानेंगे कि ईश्वर है? बहुत बाह दुख रही है, पैर भी दुख रहा है। करी है, अच्छा किए हैं सहायता। अभी बातचीत हो रही है, फिर अंत में रूप लोग अंत में गोवर्धन धारण की ही लीला फिर से आवृत्ति कर रहे हैं। क्व सप्तहायनो बालो क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते समका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, सप्तहायन बालह क्व महाद्रि विधारणम गिरिराज धारणम च क्व ततः तस्मात् एकस्मिन् मिथः विरोधी धर्म द्वयात् तौ आत्मजे पुत्रे न अस्माकं शंका विप्रतिपत्तिज संशय बालोयम् बालाद् अन्यः परम विलक्षण देवादिर्वा इति जायते। हे ब्रजनाथ, तव आत्मजे आपके आत्मज में आपके पुत्र में न अस्माकं शंका जायते। आपके पुत्र कृष्ण में हम लोगों को बहुत संशय हो रहा है। क्या संशय? कि अयम बालः या बालात अन्य परम विलक्षण देवादिवा, यह बालक है मनुष्य का कि बालक के अतिरिक्त अन्य कोई देवता है, क्या है? इस विषय में हम लोगों को संशय हो रहा है। क्व स्वप्त हाय न बाल, कहां सात वर्ष का बच्चा और महाद्रि विधारणम क्व, और कहां महापर्वत का धारण करना। एक तरफ इसकी छोटी अवस्था और दूसरे तरफ विशाल पर्वत, सब कैसी धारण किया, इस विषय में हमें बहुत शक हो रहा है, संशय हो रहा है। यह वास्तव में बालक है कि कोई देवता है, हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। वैसे हमारा जो अनुभव है वो ये बता रहे हैं कि चाहे जो भी हो, इसमें हम लोगों का अनुराग बढ़ता जा रहा है और इसका अनुराग बढ़ता जा रहा है। ये है कौन? कृपया इस पर प्रवचन कीजिए, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बताइए। कृष्ण को सामने देखने वाले, कृष्ण के साथ रहने वाले तो कृष्ण को समझे ही नहीं, नहीं देखने सुनने वाले क्या समझेंगे। हरीश्वरी जी कहते हैं प्रतिक्षण ब्रजवासी देख रहे हैं भगवान की लीला, उनका ऐश्वर्य दर्शन, और फिर भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। तो भगवान की लीला ही अद्भुत है, विचित्र है। तो भगवान को समझने के लिए भगवान के बाप से पूछना पड़ता है, वो जानते हैं। नंद बाबा भगवान के पिता है ना, इसमें किसी को आपत्ति है? कृष्ण का परिचय ही दिया था नंद नंदन से, आई नंद तनुज किम करे पतितम माम किम करम पतितम माम विस्मय भवाम। हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, मैं आपका किंकर। नंद महाराज, भाई किसी बच्चे के विषय में पूछना हो, पुत्र के विषय में कि कैसे है क्या है, तो बाप ही बताएगा ना, कब जन्म हुआ है, जन्म लेकर क्या क्या किया, कैसे पढ़ा रहा, वो सब देखा है, उसने जन्म दिया है तो देखा है। इसलिए गोप लोग पिता से ही पूछ रहे हैं, ये ठीक ही किए। हरीश्वरी जी ऐसा कहते, यहां तक कि पुत्र का नाम लिखा जाता है तो उसका परिचय थोड़ा देने के लिए सबसे पहले फादर्स नेम लिखा जाता है, पिता का नाम। और एक परंपरा है कि अपने नाम में पिता का नाम रख करके उसके बाद टाइटल लगाते, है ना? पिता के नाम के बिना पूर्ण परिचय होता ही नहीं है पुत्र का। तो पिता से नहीं पूछा ये जाएगा तो दुनिया में दूसरे से पूछ करके क्या होगा। पुत्र के विषय में जानना हो तो पिता से पूछना चाहिए। इसीलिए गोप लोग कृष्ण के पिता के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास, और कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो एक लीला दूसरे का विरोधी है। विरोधी माने विपरीत। यह बालक है कि कोई देवता है या क्या है? अगर देवता होता तो हम लोगों से प्रेम नहीं करता। देवता देवता से प्रेम करेगा ना, जैसे आदमी आदमी से प्रेम करता है। तो देवता भी नहीं है। और जब इसकी लीला देखते हैं, क्वा महाद्री विधारण, ये महापर्वत धारण, इससे लगता है कि देवता है और हम लोगों से प्रेम कर रहा है। तो क्वा सप्तहायन बालह और क्वा महाद्री विधारण तो इसीलिए तव आत्मजे न शंका जायते, संशय बना रहता है। अभी एक दो मिनट पहले नहीं, जब से गोवर्धन उतारा तब से शंका उत्पन्न हो रही। प्रेम बढ़ ही रहा है, यही तो असली लाभ है पंचम पुरुषार्थ से बढ़ने के। जानने की क्या जरूरत ये कौन है? लेकिन यह भी बहुत मधुर बात है कि है क्या, आप बताइए। तो श्री नंद बाबा कहते हैं, श्री नंद उवाच श्रूयता मे बचो गोपा व्यतु शंका चोर्भके एनम कुमारम उद्दिश्य गर्गो मे जदुवाच। नंद महाराज ने कहा, हे गोपा एनम कुमारम उद्दिश्य गर्ग मे मह्यम जत ह स्फुटम आह वाच तत्वच मे मत्त श्रूयताम अस्मिन अर्भके बालके कृष्णे वह जुष्माकम शंकाम च व्येतु निर्वर्तताम। नहीं, आप जो शंका कर रहे हैं हमारे पुत्र के विषय में स्वाभाविक है, तो सुनिए। सबसे पहले नंद महाराज कहते हैं, हे गोपा मैं बचा श्रूयता, सुनिए। नंद महाराज जब बच्चे के विषय में इनकी शंका दूर कर रहे हैं। अद्भुत माधुर्य है भगवान की लीला। उनको कोई शंका नहीं है, शंका नहीं है कि गुरु की बात सुने हैं, गर्गाचार्य की बात सुने हैं। गुरु के मुख से सुनने पर संशय चला जाता है। और किसी शिष्य का वास्तव में यही कर्तव्य है कि गुरु के मुख से जो सुने बिना बदले उसी को कहे। नंद बाबा इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु मुख से गर्गाचार्य से जो सुना है कृष्ण के विषय में, हू बहु उनकी बात जैसे रिकॉर्डर कहता है वैसे कह दिए। हे गोपा सुनो, एनम कुमारम उद्देश्य, इस बच्चे के प्रति महाविद्वान गर्गाचार्य ने जो मुझसे कहा था वह वचन मुझसे सुनो। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं, पूरा आशा करता हूं कि आप लोगों की शंका चली जाए, बीत जाएगी। आपकी शंका बीत जाएगी, वास्तव में शंका बीत गई। ऐसी बात है कि जब गर्गाचार्य ने कह दिया कि इसका लालन कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, कीजिए, तो कोई नहीं शंका रहे। भाई गर्गाचार्य क्यों कहेंगे कि रक्षा करो, अगर ईश्वर होता तो। नंद बाबा ने सोचा कि गोपायसो समाहित, अंत में कहा गर्गाचार्य ने कि इस बच्चे की रक्षा कीजिए, भाई हिफाजत रखिए। तो नंद बाबा का प्यार बढ़ा, उन्होंने समझ लिया कि वो बड़े भाग्य की बात है नारायण का आवेश होता है हमारे बच्चे में, नारायण के समान है और ये है वो है, इसकी रक्षा करनी है। इसी वाक्य ने ईश्वर मान की भावना को निरस्त कर दिया। वाक्य आएगा जिसकी व्याख्या दूसरे सिटिंग में की जाएगी। तो जो बात गर्गाचार्य से नंद बाबा ने सुना उसी को कहा बिना बदले। और यह भी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका निश्चित चली जाएगी। इतना प्रमाण है, इतना सुंदर बात है गर्गाचार्य जी की, शंका चली जाएगी। बेतु बेतु मैंने बीत जाए, निवर्तताम निवर्तित हो जाए आपकी शंका। अस्मिन अर्भके वह शंका च बेतु बीत जाए। इस बच्चे के विषय में आपको जो भी संदेह है सब चला जाएगा। सुनिए अब इन श्लोकों की व्याख्या इत्मीनान से की जाएगी। बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।